कल हमने बहुत सुंदर महाराज के मुखार का लीला सुनी, कालिया नाम सुना, उसी संख्या में महाराज और आगे बढ़ेंगे। मैं आप सब से प्रार्थना करना चाहता हूँ, ध्यान पूर्वक कथा का वर्णन दीजिए। कृपा करके एक छोटा सा रिमाइंडर अपने मोबाइल फोन को बंद कर दीजिए, ताकि जो है पूरे मनोयोग से महाराज के मुखार कथा सुन सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। हरे कृष्ण।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। तो आज इस भागवत कथा सत्र के चतुर्थ दिवस है। आज भी आप जितने श्रद्धालु भक्तजन मातागण पधारे हैं, सभी को मैं इस्कन की तरफ से, इस कथा आयोजन कमेटी की तरफ से और विशेष करके इस्कन पंजाबी बागसी राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जी की तरफ से भी आप सभी को स्वागत करता हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामधृक जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु जय नीलांबुज श्याम नीलजी मुत सन्निभ जय पद्माधरी त्रिभ्यां निषेवित पदांबुजं जनार्दन जगत बंधो शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानं दासत्वं दहि मे प्रभु दासत्वं दहि मे प्रभु तो कल तक आपने सुने थे कि श्री कृष्ण बलराम वृंदावन छोड़ करके मथुरा के आउटस्कर्ट में पहुंच चुके हैं, आउटर में है, वेट कर रहे हैं, एंट्री नहीं किए हैं। अब मथुरा में सारे सर्वसाधारण लोग, बालकों से लेकर के सब बड़े उमंग से भरे हुए हैं, बहुत आकुलित, बहुत आतुर हैं उनको दर्शनार्थ, उनको स्वागत करने के लिए। तो जब बालकों के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुआ कि ये दोनों कुमार अपने साथियों के साथ अभी आने वाले हैं मथुरा नगर दर्शन करने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट फैलने की तरह पूरे नगर में सभी के अंदर एक करंट खिल गया। ओ, आज तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, सही में आ रहे हैं, इस रास्ता पर आएंगे, हमारे घर के सामने जाएंगे। बस तो उनको देखने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, उनको भेंट देने के लिए आप नाना प्रकार के उत्साह आशा लेकर के लोग अपने अपने पोजीशन ले ली, सब सीट ले ली, मैं इधर खड़ा रहूंगा, ये इधर खड़ा रहेगा, मैं ये लेकर खड़ा रहूंगा, मैं दीप लेकर, मैं फूल लेकर के, मैं ये करके वो करके। यहाँ मथुरा के बहिर प्रदेश में फाल्गुन का महीना था, दिन तो इतना कोई बड़ा नहीं, खा करके थोड़े समय रेस्ट लिए थे भोजन करके गोपाल लोक ने, अब उठ गए, लगभग अपराह्न के समय होने वाला है। अपराह्न में दोनों बालक कुमार उठ गए और सारे और बालक भी उठ गए, उठ करके बोलने लगे, बाबा अभी पास में है, यही मथुरा नगरी है, थोड़ा देख करके आते हैं सिटी कैसा होता है, नगर होता कैसे। हमारा जन्म से तो गिरी कंदराए पहाड़ी जंगली में घूमते घूमते आए, गाय बछड़े के पीछे घूमते रहे, चराते रहे, सिटी देखे नहीं अभी तक। तो जब यहाँ तक आ गए, अब काली उत्सव में जाएंगे, पता नहीं सर क्या क्या होगा, आज थोड़ा घूम के देख लेते हैं, अपने आग्रह प्रकाश किए। नंदराय बोले, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं किसको भेजता हूँ आपके साथ, तो चलो, नहीं हम जाएंगे केवल अपने साथियों के साथ, हम तो दिन भर पूरा जंगल में वृंदावन घूमते हैं, ये जाएंगे सिटी में आ जाएंगे, क्यों आप लोग परेशानी होते, दाव तो है ना साथ में। लेकिन नंदराय को मन नहीं पूछ रहा था, बालक है, ये राजधानी है, कैपिटल सिटी है, कोई साधारण टाउन होता तो कोई बात अलग है। अब कभी गए नहीं, कब कुछ गड़बड़ करे, मिस्टेक करे, क्या करें। सनंद जी बोले, जाने दो बच्चे को, क्या ऐसे संकुचित बालक है, कभी गए नहीं, पहली बार जाएंगे, जाएंगे घूम कर आ जाएंगे। और कहा उनको कोई नगर का वेशभूषा बातचीत पता ही नहीं, उनको ऐसे देखकर शर्म करके आ जाएंगे। मन करता है जाने दो, नहीं चाहते हैं कोई बड़े बूढ़े जाएं उनके साथ। तो नंदराज देखे बड़े भाई भी ऐसे बोल रहे हैं तो जाने दो, तो लेकिन उनका मन नहीं बुझ रहा था। बहुत कुछ आवश्यक समझ रहे थे उनको समझा देने के लिए, बोलने के लिए। तो बुलाकर बोले, देखो बच्चों जा रहे हैं ना, राम तूने ध्यान रखना, ये बड़ा चंचल है, कान्हा बड़ा चंचल है, ध्यान रखना। देखो किसी के वस्तु को छूना नहीं, किसी के घर में भवन में दुकान में घुसना नहीं, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। कृष्ण बोलते, बाबा मैं कहां से झगड़ता हूं किसके साथ, मेरे से झगड़ना आता ही नहीं, कितने जेंटलमैन हूं मैं, भद्र बालक हूं। आप बोलते झगड़ता हूं, मैं कहां झगड़ता हूं किसके साथ, नहीं तू तो झगड़ता नहीं तेरे साथ सब झगड़ते हैं देखो आपस में भी हल्ला गुल्ला झगड़ा नहीं करना, ये बड़ी भारी नगर है, महाराज के अपने नगर है, देश है। और ध्यान देना, कभी कभी रास्ता है चौराहे पर, बड़े शहर के अंदर हो सकता है कोई ट्रैफिक पुलिस, मतलब बड़े बड़े राजसेवक विशेष पोशाक पहन करके यूनिफॉर्म में खड़े होंगे, उनको देख करके चुप जो बोलेंगे ऐसा करना, कुछ उनके साथ की तरह गड़बड़ नहीं करना। ये नहीं समझना कि तू गाय उड़ाकर मतलब गाय के पीछे चल रहे हैं, जो मर्जी इसे चलेंगे खेल के, ऐसा नहीं करना, वैसे अधिक से चलना, ये डालने ये नहीं है। बहुत कुछ उनको बोल के समझा देना चाह रहे थे, कितने भी कहे उनको कम लगता था, नहीं वो ही बता देना चाहिए, ये बताना चाहिए, लेकिन बच्चों कहाँ सुनते बूढ़ों की बात, उनको तो बस मन बन गया जाने का, तो जाने ही, वो आपने क्या बता रहे। बोले बाबा ठीक है अभी जाके आ जाएंगे, वो शाम होने से पहले आ जाएंगे, क्यों चिंता कर रहे अपने। नंदराय का मन तो नहीं बुझ रहा था, वो तो खेलते फिलते पैर उठा करके बस चल पड़े। अपने यूनिफॉर्म सभी का था, चप्पल वप्पल तो कोई नहीं पहने थे, एक कछनी मारे थे और एक पटुके बांधे थे, अपने लकुट उठाए चल दिए बस। उनको कौन सा नगर तक हो गए नहीं, पहली बार जन क्या पता है। चल पड़े खेलते खेलते बस, एक दूसरे को हाथ पकड़े बस दौड़ पड़े। केवल ब्रजपति नंदराय नहीं, जितने गोप थे सब एक टक उनकी ओर देख रहे थे। जब तक वो बच्चे नहीं आए तब तक मन और प्राण उन्हीं में लगे रहेगा, कब आ जाएंगे। वो तो व्यक्ति का कहें, जो ब्रज से इतने सारे बैलगाड़ी में छकड़े में जो सब बैल आए थे जोत करके, अभी वो सब चल रहे हैं, वो भी देखे बच्चे जा रहे हैं, वो भी मुंह में घास लेते लेते उनके ओर देखने लगे, वो भी अपने शुद्ध खो बैठे। तो बच्चे निकल गए, मथुरा नगर का दर्शन की लालसा, बड़े उत्साहित होकर चले। तो वहां पहुंच करके नगर द्वार में देख रहे हैं, पहले गेट को देख रहे हैं। मथुरा नगरी, तत्कालीन मथुरा नगरी कंस के समय का, वो एक महान दिग्विजय राजा का राजधानी था, और इसी हिसाब से बड़े सुचारू ढंग से, बड़े सही तरीका से उसका बनावटी भी हुआ था। क्योंकि जो राजा का अपनी राजधानी होता है तो हमेशा उसको प्रोटेक्शन के लिए बहुत प्रकार की व्यवस्था किया जाता है। पूरे नगर के चार पार्श्वों में, चार दिशाओं में विशाल विशाल संखमरमर स्फटिक मणि में बना हुआ गोपुरम था। बड़े बड़े गेट था और गेट के ऊपर सोने और चांदी के मड़े हुए छज्जे सब थे, बड़े बड़े ध्वजा लगाया गया था, कई रत्नों की जटित ध्वजाएं, और उसके नीचे बहुत बड़े बड़े भारी सोने के किवाड़ लगाया गया था। दरवाजा लगभग हमेशा खुला ही रहता था, कभी कोई विशेष समय में बंद किया जाता था युद्धकालीन परिस्थिति में, नहीं तो खुला ही रहता था। उस गोपुरम से लेकर के नगर के चारों पार्श्व में बहुत भारी ऊंचाई तक लाल पत्थर में बहुत मोटे परिखा दीवार प्राचीर निर्माण हुआ था। हर स्थान स्थान में सैनिक तैनात थे उसके ऊपर अपने अस्त्र के साथ। इतनी भारी ऊंचे परिखा था कि कोई साधारण मनुष्य उसको चढ़ के नहीं जा सकता था। नगर में प्रवेश करने के लिए एक वही महाद्वार जो चार द्वार था चार दिशा में, उसी में जाना ही होता था, आना होता था। जब गेट बंद तो कोई नहीं जा सकते थे, फुल प्रोटेक्शन था। नगर के बाहर देश में बहुत बड़े नदी के जैसा जल भरा रखा था, उसमें बड़े भीषण मगरमच्छ आदि रखा गया था। ये सब किया जाता है राजाओं ने अपने महल को प्रोटेक्ट करने के लिए, करते हैं गड़खाई आदि। उसके बाद में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प उद्यान आम्रकानन आदि था, नगर को बड़े सुंदर सजाने के लिए इस प्रकार व्यवस्था था। इसी कोई आम्र उद्यान में सारे गोप नंदराय आदि सब वहीं से विश्राम कर रहे थे, अपना टेंट लगाए थे। तो उन्होंने चारों तरफ घूमकर देखे, इधर उधर उधर देखे कैसे हैं, भारी बिल्कुल बंद, चारों तरफ बंद है, सिटी उसका अंदर होता है, दीवार के अंदर सिटी होता है। हम तो अभी तक देखे दीवार के अंदर घर होता है, अभी दीवार के अंदर सिटी होता है, सारे राजा महाराजा उसका दीवार के अंदर ही रहते हैं, बताने बड़े लगा, देखते हैं क्या होता है अंदर। तो अंदर प्रवेश किए, प्रवेश किए तो अभी उनके ओर से बोलता हूं, जो प्रवेश करने वाले वो क्या देखते हैं, अब उनके तरफ से बाद में बताएंगे क्या देखते हैं। जो घुस रहे थे, प्रवेश कर रहे थे, वो देख रहे हैं कि पूरी मुख्य दरवाजा से लेकर के आंख जब तक दृष्टि जाता है तब तक दोनों तरफ से सुंदर सुंदर मंच बंधा करके दोनों तरफ से वंदनवार तोरण लगा गया है, रंगीन ध्वजाएं पताकाएं आम के पत्ते का एक लगता है ना, इसे धगा कर टांगते हैं, इसे सजावट हुआ है। जगह जगह पर चतुष्पथ चौराही है, यहाँ पर विशेष रंगोली होता ना, रंगोली का चित्रकारी से बना रखे, मंडल से बना रखे हैं। और जहां तहां विशेष मंगल सूचक पदार्थ सब रखे गए हैं, पूर्ण कुंभ आदि आदि। और उन्होंने गए महाद्वार क्रॉस करते, बहुत श्रृंखलित भाव से पंक्तिबद्ध रूप से दोनों तरफ से बड़े बड़े उच्च उच्च अट्टालिका हैं, कोठी हैं सब। हर भवन के ऊपरी भाग अलग अलग रत्नों से, मणि मुक्ता सोने चांदी से मढ़ा हुआ था, बड़े सुंदर भवन सब था। और उसमें से पूरे सफाई करके नाना प्रकार के रंग बिरंगे रंग रंगीन किया गया था। उस भवन के ऊपर और रत्न दंड में ध्वजा पताकाएं फहरा रहा था, अलग अलग रंग के पताकाएं अलग अलग भवन के ऊपर है। उस पताकाओं को देखने से ही पता चल जाएगा ये कौन से वर्ण की भवन है। जैसे कोई ब्राह्मण व्यक्ति के भवन हो तो उनके भवन के ऊपर गेरुआ वस्त्र की ध्वजा था, जिसमें शंख और श्रुव की चिन्ह था। जो क्षत्रिय भवन था उसके सफेद कलर के ध्वजा होता था, जिसमें आयुधों का चिन्ह था, वैश्यों का पीले वर्ण की ध्वजा था जिसमें अन्न आदि का चिन्ह था। इसे ध्वजा के रंग, पताका के रंग और उसका चिन्ह को देख करके ये पता लिया जा सकता है किसी वर्ण की भवन है वो। और प्रत्येक, लगभग प्रत्येक भवन के द्वार पर बड़े सुंदर रोली रंगोली में मंडल बना हुआ था। भवन की दोनों मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ से पूर्ण कुंभ, कुछ अक्षत तंडुल नित अन्न धान्य या जौ ये सब रख करके उसके ऊपर एक मिट्टी के घड़ा कलश होता है नूतन कुंभ, उसमें पूर्ण कुंभ पानी भरा हुआ था सुवासित जल, उसके ऊपर सपल्लव आम्रपल्लव पत्ता की आम्रपल्लव आम के पत्ते की लगाया गया था, उसके ऊपर एक बिल्कुल ताजे नारियल, हरी नारियल उसके वृंत के साथ वो रखा गया था, और उसके ऊपर एक सुंदर कपड़ा ढंका गया था, उसके ऊपर स्वस्तिक चिन्ह लिखा गया था, और यहाँ उनको पूजा किया गया था दही हरिद्रा हरित की चूर्ण और चंदन रोली ये सब लगा करके उनको ढंग से पूजा किया गया था। सुपारी भी रखा गया था और दीपमाला भी था, दीप भी जल रहा था, और इस प्रकार के दोनों तरफ से इस प्रकार कलश, पूजित कलश रखा गया था। कलश के पास में दोनों दरवाजे के दोनों पार्श्व में फल सहित पूरे केला के पेड़ रखा गया था, कदली स्तंभ के साथ, केला के साथ फले हुए कदली स्तंभ सुपारी के पेड़ बंधा गया था, सजाया गया था। उसी के साथ भी नए बांस के अंबर और झंडा और एक बोर्ड स्वागत फलक वो भी लगाया गया था, सुस्वागतम वसुदेव नंदनम स्वागतम, वसुदेव की कुमार आ रहे थे, स्वागत फलक भी लगाया गया था। और भवन की जहां तहां गवाख्य था, गवाख्य समझते ना, खिड़की, खिड़की था, वो खिड़की खुले हुए थे, खिड़की के अंदर से सुगंधी धुआं आ रहा था, अगरू चंदन लगा रखे थे घर के अंदर, सुगंध फैल रहा था। भवन के ऊपर छज्जे पर सभी प्राय भवन में लोग कुछ पोषक पक्षी रखे थे, जैसे मयूर है, तोता है, सारी है, कबूतर सब घर में रखते हैं ना बड़े बड़े, वो रखे हुए थे। वो लोग कहीं कहीं ऊपर में छज्जे पर बैठ करके अपने कुजन कर रहे थे, कहीं के नीचे उतर के जहाँ सब दाने चुग रहे थे बैठे थे, बहुत सुंदर सुंदर आवाज कर रहे थे, और नीचे तरफ से देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं सब लोग, नीचे तरफ से पंक्तिबद्ध भाव से प्रत्येक भवन की सामने पर लगभग इसी प्रकार के सजावट पूजा पूजी कलश सब था। कहीं कहीं भवन के सामने सेवक सेविकाएं फलभार लेकर के खड़े थे, भरपूर टोकरी कई प्रकार के फल फूल, कोई कोई ब्राह्मण के घर के सामने तो पूरे ब्राह्मण ब्राह्मणी और को बालकों को लेकर के पूरे पूजा के प्लेट तैयार करके रखे, तिलक चंदन आरती उतारेंगे तिलक करेंगे। उस भवन के बीच कई कई जगह में कुछ दुकानें होता था, कोई जगह में कुछ सभा भवन था, कोई जगह में बड़े बड़े लोग बैठने के लिए चबूतरे थे। वो सभा भवन और चबूतरे सारे मूंगे पन्ने हीरे मणि माणिक्य से बना हुआ था, कोई साधारण सीमेंट ईट से नहीं, सब सीमेंट ईट का तो सवाल ही नहीं था, नहीं सीमेंट तभी जमाने, सब मणि माणिक्य रत्न सुने, ये चांदी तांबे का तो बात ही नहीं, थर्ड क्लास है, लोहे का तो नाम निशान नहीं, सब ऊपर की माल था। आजकल केवल शब्द सुनने के लायक ही देखने का भाग्य में नहीं देख नहीं सकते, वैदुर्य मणि नीलमणि ये सब चीज से बना हुआ था, पूरे नगर साधारण लोगों का भवन ऐसा हुआ करता था, जहां चबूतरे रास्ते में बैठ करके लोग बैठ के बातचीत करते, ये सब चबूतरे भी इसी में बना हुआ था। और इस प्रकार के पूरे राजपथ और आसपास के जो छोटी छोटी साइड गलियां भी मैं पहले बताया था, पूरा धुला करके साफ करके इतर छिड़क करके रखा गया था, विशेष प्रकार में सजावट किया गया था। और जो भवन के जो लोग आज विशेष उत्सव करके, और आज आपने नेत्र के लिए उत्सव है, वसुदेव नंदन के दर्शन करेंगे, इतने पराक्रमी बालकों के दर्शन करेंगे, खूब सुने जिसके बारे में, इसलिए बिल्कुल सज झज करके बालकों से लेकर के बूढ़े तक सब खूब तेल इतर सेंट पेंट लगा करके अपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र जो रखे थे बक्से अलमीरा से निकाल कर से पहन करके आप बैठे, अपने अपने सीट पहले से बुकिंग करके बैठे, एडवांस बुकिंग। अब बोलते हैं जैसे ये नंद कुमार वसुदेव नंदन अपने साथियों के साथ प्रवेश कर गए, तो ये तो साधारण जानते हैं, सभी घर में कोई काम हो, फेस्टिवल हो, स्त्रियां अभी भी आ रही हैं, वो थोड़ा लेट में, क्योंकि घर का काम उनको संभालना पड़ता ना, खैर यहाँ तो यहाँ जल्दी आ जाते हैं, तो घर में कई काम में व्यस्त रहते हैं। यद्यपि उनको पता चल ही गया था अब आने वालों को हम दर्शन करेंगे आएंगे, लेकिन कब आएंगे पता नहीं, कब आएंगे आने से हम बता देना, खबर किसी बताए थे बच्चों के कब अगर आते हैं तो हम बता देना, हम ही देखेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत में स्त्रियों का तो बड़ी वर्णन किए हैं, 7-8 श्लोक उन्हीं के लिए बोले, बोलते हैं कि जब वो प्रवेश कर गए पूरा हल्ला हो गया, कई शंख बजाने लगा, कोई भैरी बजाने लगा, कोई हल्ला करने लगा, कोई ताली बजाने लगा, कोई मंत्र पाठ स्वस्ति वचन करने लगा, शोर गोल भीड़ दौड़ पड़े, हाँ 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 मैं इधर खड़ा, तू इधर जाओ, तू इधर जाओ, सब प्याक दोनों तरफ से खचाखच भीड़ रास्ते के दोनों तरफ, स्त्रियां हैं तो सड़क के ऊपर नहीं आ सकती, आजकल भले आ जाए तभी जमाने में तो नहीं आ करती थी। अब जो वृद्धाएं थी वो मेन गेट पर आकर खड़ी हो गई, इतना तक तो उनका अलाव है, वो चलेंगे बारंडा के ऊपर दरवाजे से बाहर आकर से वृद्धाएं खड़ी हो गई। जो वधुएं हैं कुमारी हैं वो लोग तो नहीं आ पाएंगे, वो लोग भागे छज्जे के ऊपर, छत के ऊपर दौड़े, छत के ऊपर खिड़की के पास जहां था पोजीशन मिला, खड़े हो गए। अरे जिसका मुख्य मेन सड़क के दोनों तरफ जिसका घर है वहां तो है, वो उनका जो बंधु बांधव है वो तो पहले से बुकिंग करके आ चुके हैं, सबका घर भरा है, अब जिसका दूर दूर से इधर उधर कॉलोनी में दूर है वो तो खूब सुने हैं भाई, खूब सुने हैं इस दोनों कुमार के बारे में, इतने मन में उत्साह है उनको देखने के लिए कि कितने व्याकुलता बोला ही नहीं जा सकता। जब शोरगोल सुने और पता चला कि वो दोनों आ चुके हैं, अरे बाप रे, इतने त्वरा उनके अंदर आया, जल्दी भागो निकल ना जाए, अब तो चल पड़े, हम चल के चले जाएं, क्या देखें कच्चू, भागो भागो करके इतने जल्दी किए। बेचारी स्त्रियां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं माताओं के वर्णन, कुछ स्त्री तो बोले अरे मैं कपड़ा पहनकर चलती हूं, अब फटाफट आलमीरा से कपड़ा पहन रहे थे, कपड़ा आधा पहनी भागी, बोला लेट ना, नीचे की भाग वस्त्र ऊपर की वस्त्र पहनने को, ऊपर पहने नीचे ना पहने ऐसे कुछ हाफ हजार, कोई बोलते हैं कि कान के फूल लगाते ना यहां लगाई इतर छूट गई, हाथे पकड़ी पकड़ी दौड़ी, कौन बोलता है कि उल्टा हो गया, जो इस तरफ पहना था उस तरफ पहन लिया, जो उस तरफ पहना था उस तरफ पहन लिया, उल्टा नीचे ऊपर नीचे कर लिए। कभी कभी कोई स्त्रियां नहा रही थी, स्नान कर रही थी, पता चला अरे हम चल रही है, अरे जा रही क्या, अरे रुको ना, अरे अब तो निकल जाएंगे, अब स्नान कर रही थी इसे एक बकेट पानी डाली, एक बकेट पानी बाकी, वही गीला कपड़ा में दौड़ी, आधा स्नान किए दौड़ पड़ी, किसी ने उपटन लगा रहे थे, जानते ना उपटन लगाता अंगराग, वो ऐसे लगाते अवस्था में दौड़ पड़ी, बोले अब टाइम चले जाए, किसी ने तो भोजन कर रही थी वो आधा थाली छोड़ करके हाथ भी नहीं धोई मुंह भी नहीं धोई इसे चली झूठे हाथ में, किसी ने किसी को भोजन परोस रही थी, अब हाथ में लेकर आई थी रोटी देने के लिए, वो बैठा है रोटी खाने के लिए, थाली लेकर के रोटी देगा, वो रोटी ये छोड़ के भाग गया। अद्भुत बात है, सुखदेव जी कहते हैं कई माताएं अपने शिशु बालक को स्तन पान करा रही थी, जब उन्हें खबर मिली वो बच्चे को ही फेंक कर भाग गए। अब लोग कितने उमंग उनका अंदर, कितने तरह, क्यों सबका मन में इतनी व्याकुलता, इतनी आकुलता कि इस भुवन मोहन, इस कुमार को तो एक बार, जिनको इतनी बार सुना हो जिनके बारे में, भले एक पल के लिए क्यों ना हो, इस छवि को एक बार मैं निहार लूं बस। इसलिए सब दौड़ पड़े थे। अब आकर के जिनको जहां जैसे इस अवस्था से दौड़ करके आए, बोलते हैं क्या इतने सुने थे, इतने पागलपन होकर भाग रही है, बहुत कुछ सुने थे, प्रतिदिन तो सुनते ही थे। उनका सुनने का एजेंसी में कल बताया था, माला बेचने वाली, फल बेचने वाली, सब्जी बेचने वाली, दूध दही घी बेचने वाली, ये सब उनका एजेंसी था, मीडिया थे उनके, उनसे सब खबर लेते थे। स्त्रियां वो खूब बोल करके, जो स्त्रियां कोई बात को बोलते ना, तिल को ताल प्रमाण ऐसे बताते हैं, तो समझ ना तिल ताल क्या होता है, तो इस प्रकार बताते हैं। तो ऐसे सुने थे बेचारे, तो घर के बाहर जाए नहीं, टीवी भी तो था नहीं कि देख सकते, फोटो भी नहीं था, तो इसलिए बड़े उत्साह था देखने के लिए। विशेष करके जो सुने थे ऐसे, मारपीट तो बहुत करते थे, सुनते वो चलते सब जगह में, कौन से क्या कम मारपीट किया ना क्या, इतने में बहुत ज्यादा वो आकर्षित नहीं थे। मैं कल बता था, विशेष तीन लीला पर उन्होंने रिझ गए थे। एक तो अग्निपान किए थे, हैं बच्चा आग पी गया ना, पूरा जंगल के आग पी गया, काली जैसे महासर्प को भी दमन कर लिया, नाचा उनके ऊपर। और सबसे बड़ा था, 7 साल के लड़का बारिश से बचाने के लिए, आंधी तूफान से बचाने के लिए पर्वत उठा लिया। भाई हम लोग तो 70 साल के भी हो गए, 7 किलो पत्थर उठा नहीं सकते, उठा सकता है, भारी पड़ जाएगा, 2 हाथ में भी उठाए 1-2 घंटा ना होगा, ना ब्याक पेन हो रहा। और ये सुने कि कोई 1-2 घंटा नहीं, पूरे पर्वत उठाया, 7 दिन 7 रात तक, और 2 हाथ नहीं लगाया, 1 हाथ बाएं हाथ के, वो भी पूरे हाथ नहीं, कनिष्ठ अंगुली में ऐसे। कौन आश्चर्य नहीं होगा, देखना नहीं चाहेगा कैसा लड़का है, 7 साल का बेटा, तो अभी तो कितना क्लास में पढ़ेंगे, 3रा 4था कौन सा ग्रेड, 3रा ग्रेड में, सेकेंड ग्रेड में पढ़ गया होता। सचमुच आश्चर्य होना था, कैसे भाई, उनके बारे में डिटेल खूब सुने, क्योंकि कई लोग जाकर देखे भी मथुरा से, क्योंकि 7 दिन तक था ना, सो ऐसे नहीं घंटा 2 घंटा 2-3 घंटा में खत्म हो गया, 7 दिन तक चला, और कोई भी जाकर बहुत जगह देखे, देख करके आए, क्योंकि परिक्रमा तो पहले भगवान ने शुरू कर दिए थे। गिरिराज गोवर्धन जी जब वो सलमली द्वीप से आए, पुलस्त्री जी ने ला करके यहां रोके रखा है, तभी से सत्ययुग से लेकर के ये कलयुग लगभग प्रारंभ पर, द्वापरांत पर जंत वहीं पड़े रहे गिरिराज जी, कोई ना उनको एक प्रणाम, ना परिक्रमा का बात ही छोड़ो, कोई पूछ नहीं रहते उनको, जाने दो। सबसे प्रथम बार उनके पूजा अर्चना परिक्रमा सम्मान को भगवान स्वयं शुरुआत किए, स्थापना किए उन्होंने, इज द फर्स्ट पर्सन, वही पूजा करवाए, इंद्र की पूजा को रद्द करके वो कराए। कहा कि इंद्र की पूजा करे भाई, पूछे उनके से, बोले इंद्र की पूजा हर साल करते हैं, पीढ़ी से होता है ना, देखा कभी इंद्र को, देखे तो नहीं, इतना सारी भारी भोग बनाकर खेले तो खाया, इंद्र देखा क्यों खा रहा है, तो कहा फिर ना, इंद्र बारिश दे रहा है, अरे बारिश दे रहे हो, बारिश का काम देना कौन सा काम है? आप उनको भोग खिला रहे हैं, जो नहीं खिला रहे हैं बारिश नहीं हो रहा है क्या? समुद्र में बारिश का जरूरत है? बारिश होता ना नहीं? बोले बताओ मुझे, जहां बारिश जरूरत है ही नहीं, यहां क्या बारिश कर रहा है? आप उसको खिला रहे यही बारिश करना, तो समुद्र में क्यों कर रहा? तो आप उसको आप ऐसे युक्ति समझाती तो समझ के बोले बात बात बोले, लेकिन इतने सारे पूजा सामग्री जुगाड़ कर लिए हैं, पकवान बना रखे हैं, कुछ क्या कर? नहीं, पूजा तो करना है, किसको करें ना? जिससे हमारा काम बने, जिसका हम हमारा पूज्य है, हम गोप है, वैश्य है, जिससे हमारी जीविका चल रहा है, हमारा संपत्ति है गो गोधन है, हम गोपाल हैं, गाय ही हमारा सब कुछ है, हम सब गोपालक हैं ना, तो है ना, गाय के लिए जो उपकारी है उसको पूजा करें ना। इंद्र तो बारिश दे रहे, इंद्र क्या कर रहा है बारिश से? तो बारिश से सब जान कर पानी में बारिश कर रहा है ना फिर? अरे जी, संपूर्ण गोकुल को पोषण करे, उनको वर्धन करे, गोवंश को वर्धन करने वाला कौन है? गोवर्धन। ओ गिरी ऐसा है पहाड़ जिसमें कितने घास है, सुंदर सुंदर घास, सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, झरना, लाखों संख्या में गाय जाते हैं, खूब पानी पीते हैं, घास चरते हैं, हम लोग जो चराने वाले गोपाल सब छाए में बैठते हैं, गिरी कंदरा में खूब घूमते हैं, फल फूल खाते हैं, बस जितने चरते हैं इतने घास बढ़ता है, और क्या बताऊं, बहुत पत्थर है। अरे पत्थर क्या, हम उसको चलते जाते पत्थर तो स्पंज से भी ज्यादा नरम हो जाता है। गिरिराज जी ने उनको भगवान को और भगवान के जन को सेवा करने के लिए उनको पैर को कष्ट ना हो तो पत्थर की चट्टान मुलायम स्पंज जैसा बन जाता था उनके लिए, तो और गायों के लिए जितने खाए इतने देता था, गोवंश को वृद्धि करने का पूरी पूरी सब प्रकार की सामग्री उनके पास था, वो करते भी थे, इसलिए उनका नाम गोवर्धन है। तो हम जो गोवंश के रखे तो उनको पूजा नहीं करेंगे, वही हमारा तक पोषण करते हैं। सबके मन को तो बात लगा, बड़े बूढ़े गोप लोग बोले कि भाई आप बालक ऐसे लाला ऐसे कह रहा है, लेकिन चलो हम मान ले, लेकिन आपने कुलगुरु को तो पूछना पड़ेगा ना, आपने कुलगुरु हैं उनको पूछना पड़ेगा। कौन है कुलगुरु? सांडिल्य ऋषि हैं, वो तो ही बैठे थे मीटिंग में। बोले गुरुजी खड़े हो गए, हाँ मैं सुन रहा हूँ सब आपके ना, जैसा लाला कह रहा है मैं 100% के साथ, क्योंकि बाकी कोई नहीं पहचानते थे लाला को, वो तो अपने बालक समझ रहे थे, लेकिन सांडिल्य जी को तो पता था ये लाला कौन है, ये तो उनको पता था। वो बोले वो जिसको कह रहे वही तो शास्त्र है, वही तो नीति है। बोले हाँ बिल्कुल, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सहमत उनके साथ। तो फिर गोवर्धन पर्वत को पूजा करें ना? हाँ बिल्कुल पूजा करें। तब सब ब्राह्मण को बोले चलो इंद्र पूजा बंद, आज सब समन छकड़ में लोड करेंगे, ले चलेंगे यहां से, कहां गोवर्धन ले जाएंगे, वहां पूजा करेंगे। सारे ब्राह्मण लोग आकर बैठ गए, बोले हम सेकंड इनिशिएशन भी लिए हैं, पूरे डीटी वर्शिप मैनुअल, जो डीटी वर्शिप कोर्स मैंने पूरा किया मायापुर जाकर करके आए, तो सारे देवी देवता के पूजा का विधान तो हम सीखे, लेकिन पहाड़ के पूजने का विधान तो कोई किताब ही नहीं, क्या करें हम लोग पूजा किसे भाई? कोई शास्त्र पुराण किताब में तो बताओ पहाड़ को कैसे पूजे भाई, कोई पूजा हुआ था कभी? भाई पहली बार ये क्या करें? अरे कोई देवी देवता विष्णु शिव दुर्गा किसी पूजा करो, हम किताब निकाल कर ढंग से हम जानते हैं कैसे षोडश उपचार से पूजा कर लेंगे, लेकिन पहाड़ को कैसे पूजे हमको पता ही नहीं है, क्या पूजा करें? वैसे बोल रहे लाला के बात में फंस गए सब। सब बोले बात तो सही है भाई, पुजारी लोग सब पीछे बोलते हैं, पूजा नहीं जानते उनके, पहाड़ को कैसे पूजा करें भाई? अभी तक कोई पहाड़ पूजा तो किया ही नहीं। बोले फिर सब आकर उनको बोले भाई आपने बता रहे पहाड़ पूजने के लिए विधान तो बताओ कैसे पूजे, तो भगवान आचार्य बन गए। भगवान गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वे अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेदविद च अहम। बोलते हैं कि समस्त वैदिक वैदिक साहित्य वेदांत सर्वे अहम एव विद्यो हो, केवल मैं ही जानने लायक हूं सारे वेद में। वेद में और क्या जानेगा कोई, केवल जानने लायक नहीं, वेद बनाया कौन, वेदांत कृत अहम, मैं ही वेद को तो बनाया, वेद को समझा कौन भी, वेदवित मी अहम। तब वो नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा हा? अब हम कोई कर्मकांडी ज्यादा नहीं जानते, वेद हुए संस्कृति पढ़ने से दांत निकल जाता है, तो भगवान ने फिर सिखाया उनको ये पूजा विधि, गोवर्धन की पूजा पद्धति, वो लिखे पहले आचार्य वो बने उनका। बोले कैसे करें ना, कोई बात नहीं, सारे सामान लोड करके चलो, सबसे पहले गिरिराज जी को जाकर प्रणाम करेंगे, एक जगह में इकट्ठा होकर ऐसा करेंगे, फिर नोट करो सब। दोबारा क्या करेंगे ना, एक गिरिराज जी की चरण से एक शिला लेंगे सुंदर सी, हाँ लेंगे, उनको अभिषेक करवाएंगे, कैसे, पंचगव्य पंचामृत तीर्थ जल ये सब इकट्ठा करो करेंगे, पता है ना, हाँ कर लेंगे सब, उससे विशेष अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक करने के बाद, अब अभिषेक करने के बाद तैल मर्दन, सुगंधित तैल मर्दन करके विशेष तीर्थ जल में दोबारा स्नान कराएंगे। अच्छा हाँ, फिर तो फिर ना, फिर उनको वस्त्र पहनाएंगे सुंदर सुंदर वस्त्र, फिर चंदन आदि चर्चित किया जाएगा, श्रृंगार पुष्पमाल्य अलंकार में आभरण से श्रृंगार किया जाएगा, बड़े सुंदर सजाएंगे। अच्छा सजा देंगे, फिर कोई मूर्ति तो है नहीं, पत्थर को नहा सजाओ, पत्थर को भी चलेगा, और फिर ना तो फिर भोग लगे, जितने सारे आइटम बना रखे हैं कई दिनों से, सब खूब बड़ा भंडारा भोग लगेगा, भोग के बाद आरती होगा, फिर पुष्पांजलि देंगे, फिर सब हाथ जोड़ के प्रणाम करेंगे, गिरिराज जी प्रसन्न होकर वरदान देंगे, हम सब ब्रज याचना करेंगे, और उसके बाद फाइनल जो इवेंट है वो परिक्रमा होगा, नहीं उसके बाद प्रसाद होगा, उसके बाद परिक्रमा होगा। प्रसाद का भी बता दिए नियम कैसे, प्रसाद सबसे पहले गाय को खिलाना पड़ेगा, गाय और बैल को सबसे पहले खिलाओ, उसके बाद ब्राह्मण बच्चे फिर स्त्री बूढ़ी ये सब, उसके बाद आप लोग जो प्रश्न सब, इसी प्रकार स्टेज बाय स्टेज ब्याच वाइज इस प्रसाद लेना। प्रसाद के बाद सभी को परिक्रमा करना पड़ेगा कंपल्सरी, इसमें कोई छूट नहीं। कुछ बोले नहीं हम बूढ़े हम चल थोड़ी पाएंगे, इतने लंबा चलना पड़ेगा, बच्चे हैं बूढ़े हैं बीमारी हम नहीं चल सकते, नहीं सबको चलना पड़ेगा, जो नहीं चल सकता गाड़ी में बैठ कर जाएगा, करना पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो गिरिराज जी गुस्सा हो जाएंगे, गिरिराज जी के तलहटी से जंगल से सांप आकर काट देगा, बहुत डर के सांप काट देगा, चलना पड़ेगा, धमकी देकर के परिक्रमा कराए, हाँ धमकी देने लगे फिर करना पड़ेगा, सब गाय बछड़े बैल बूढ़ा बूढ़ी बच्चे सब परिक्रमा करवाए। जब गोवर्धन जी की आज भी यहां लगा रखे 56 भोग, तो वो तो अन्नकूट उत्सव किए थे, हरी पर्वत जैसा ऐसे ऐसे टोकरी में नहीं, और ऐसे भोग लग करके खूब भंडारा हुआ, और जब आरती हो रहा था, जब भोग अर्पण हुआ, तो देख रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत उनका मुंह निकला, आंख निकला, दिखाई पड़ा, सारे ब्रजवासी देख रहे हैं, बाप रे बाप उनका तो मुंह है, सब उनके मुंह को देख रहे हैं, विशाल मुख है, और लाला को सब देख रहे हैं, क्यों हूबहू जैसे ऐसे, ये केवल इतना फर्क है ये छोटा हो बड़ा बिल्कुल सेम है, अगर उस लाला को मुंह को कोई बड़ा कर दे तो ही तो है, समझ में नहीं रहता ये कैसे इधर हो गया भाई, बड़ा होकर किधर हमारे पास खड़ा, और बड़ी आवाज से बोलने लगा, मैं अभी प्रसन्न हूं आपके भोग ग्रहण कर रहा हूं, वो खाने लगा, सब दो हाथ निकला बड़ा बड़ा, सब खाने लगा, सब देख रहे हैं। कृष्ण बोलने लगे, देखा खा रहे ना, आपके इंद्र कभी खाया था ना? नहीं, ये देवता तो असली खांटी देवता है, ये तो नकली था, तो खा रहे, सारे खा गए, और लाओ, सब खाए, इतने सारे खा गए। पर्वत प्राण में बोले, अब पानी चाहे पीने के लिए, पानी कौन सा ग्लास में लाए तुझे लाएगी पीने के लिए? बोले कोई बात नहीं, जितने कुंड था सारे पानी पी गए, आसपास में सब बहुत कुंड था। आप खा पी करके प्रसन्न होकर गिरिराज स्वयं अनाउंस किए, मैं अभी पूर्ण रूप से प्रसन्न हूं, आप सभी मुझे भली प्रकार से पूजा किए, बहुत खुश हूं मैं आपके ऊपर। आप सभी का मन में जो इच्छा है, जो वरदान मांगना चाहे मांगो, जिसका मन में जो है, आज ही अभी इसी वक्त पूरा कर दूंगा, इमीडिएट, जो है मन में, किसी को बोलना नहीं चाहते, चुपचाप आंख बंद कर मन में बोलो, मैं भी मन में समझ जाऊंगा, आपके मन की बात समझ करके आपको पूरा कर दूंगा, यहीं फटाफट पूरा कर दूंगा। वही तो देख दे, सही में हो जाएगा, ये पहाड़ के सामने बोले हो जाएगा, हे इंद्र देवता, एक बार भी नहीं इसे कहा करिएगा नहीं। तो उनके अनाउंस के बाद कृष्ण ने फिर अनाउंस किए इस तरफ से, वहां से पहाड़ से किए, वहां से फिर उनके लोग से बीच में किए, अरे खड़े दिख रहे हो क्या, सबका मन में इच्छा ना है, तो बहुत लिस्ट तो बहुत भारी है, बस सब आंख बंद करो, हाथ जोड़ो, जिसका मन में जो इच्छा है चुपचाप सब प्रार्थना करो, सब पूरा हो जाए, गिरिराज जी प्रसन्न है, बोल रहे सब करो प्रार्थना। जितने छोटे छोटे बालिकाएं बालकों थे, बूढ़े थे, बूढ़ी थे, युवक युवती, किशोर किशोरी, सब अलग अलग व्यक्ति भाई, सबका मन में क्या क्या विचार, क्या पता, ये बालक को सुख बोलता, तेरा क्या मन है, तुम्हारा क्या मन है, बोलना नहीं, चुप, ठीक है करो, मुझे तो पता है, कर, नहीं बोलो तो क्या है, मुझे मालूम है तो क्या बोलोगे, लेकिन सब अपने ऐसे ऐसे करने लगे हाथ जोड़कर। अब कोई किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था, चुपचाप कर रहे थे, किसी को पता ना चले, मेरा मन में क्या है, क्यों बताऊं किसको, टॉप सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट में सब हाथ जोड़ करके, आंख बंद करके सब प्रार्थना किए। अब गिरिराज जी के रूप में तो असली गिरिराज जी तो वहीं खड़े थे, स्वरूप में वहां एक्सपेंशन था, केवल एक्सपेंशन काउंटर वहां था, असली हेड ऑफिस तो वहीं था, वो अंतर्जामी तो है ही, बोल दिया मैं समझ लूंगा, सबको मन के बात बोलो, मन मन। तो गिरिराज के रूप में कृष्ण देख रहे हैं, सभी का अंतर मन को पढ़ रहे, प्राप्त कर रहे हैं, सभी जो प्रार्थना कर रहे हैं कातर होकर के, छोटे से बड़े सब, लाखों ब्रजवासी बालक बालिका वृद्धा वृद्ध सब अपने अपने मन से प्रार्थना कर रहे हैं। और गिरिराज जी के पास एप्लीकेशन पहुंच रहा, सारे लाखों एप्लीकेशन एक ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, एक था, किसी का दूसरा कुछ था ही नहीं मन में विचार, सभी एक मांग कर रहे थे, सब अपना अपना बोले थे, मेरा कोई नहीं पता चलेगा मैं क्या मांगा, किसी उनको पता नहीं, उनका गुरु होगा, मेरा तो ये, लाखों बालक बालिका एक साथ में प्रार्थना किए, जो प्रार्थना सुनने वाला वो देखा कि सारे एक ही टॉपिक है भाई, सब्जेक्ट है कि, अब क्या सब्जेक्ट था मालूम था ना, एक चीज सब चाह प्रार्थना कर रहे थे, अगर हे गिरिराज हमारे पूजा से, हमारे सेवा से, हमारे तपस्या से आप अगर प्रसन्न हो तो, प्रसन्न हो है तो हमारा कृपा करके, यही हमारा केवल मात्र अभिष्ट, एकमात्र अभिष्ट, उसको कृपा करके पूरा कर दो। तो अभिष्ट लिखे सब्जेक्ट, सभी का लाखों का एक था, क्या था, गिरिराज जी सभी पढ़ रहे हैं, पूरे पढ़ गए, सब एक ही निकल रहे, जस्ट डिटो, क्या प्रार्थना कर रहे थे सब, हे गिरिराज अगर सचमुच आप प्रसन्न हो तो मेरा मन में और कुछ नहीं आशा है, केवल एक ही, मेरा एक ही आशा है, ये जो हमारा कृष्ण है लाला, मेरा भाई लगेगा, मेरा बेटा लगेगा, मेरा ये लगेगा, मेरा वो, जो जो जिस संपर्क जितना है वो सकुशल रहे, सप्रसन्न रहे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ये है ब्रजवासी, जिनका मन में, हृदय में, चिंतन में, बुद्धि में केवल कृष्ण प्रसन्नता के अलावा और कुछ है ही नहीं। छूट दिया गया, आग बंद करके अपने मन से बोलो, मन से यही बात निकलता है अंतर्जामी रूप में। ये भी देखें, एक ही मां और तो पूरा होना ही था। अरे जो पूछ रहा है वही तो है। इस प्रकार से गिरिराज की सविधि पूजा करके तो उसको परिक्रमा किए, बड़े उत्साह से भोजन हुआ, बहुत सारा आइटम था, खा पी करके बड़े खुश से नाच कूद करके परिक्रमा किए। परिक्रमा करके दूसरे दिन भैया दूज था, स्नान करने गए जमुना में, और इंद्र को उनका जो मैसेंजर था जाकर खबर दिया, बोला महाराज शर्म लगता बोलने के लिए, प्लीज मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतने भारी बात, शर्म की बात मैं बोलने, मुझे शर्म लग रहा है। नर बोलो तो सही ना, क्या बोलूँ आपके दरबार, शर्म लग रहा है बोलने के लिए, बोलो तो सही क्या बात ना, क्या कहूँ, इतने भारी अपमान क्या न। अरे सकड़ों सालों से जो आपको पूजा करते आ रहे थे दिवाली के दूसरे दिन सारे ब्रजवासी, क्यों नहीं क्या इस बार, क्या बताऊं, अरे किए नहीं तो अलग बात है, आपके झंडा तो गाड़े थे, कोई देखे भी नहीं, सारे भाग गए, एक कोई सूखा रोटी भला दे देते, सारे उठा के भाग गए, पानी आधा गिलास भी नहीं दिए, फिर सारे जाकर के करे क्या, तो सब प्रयास तो सबको तैयारी तो कर रहे थे ना, तैयारी तो महीना दिन से चल रहा था, पर किए क्या, अरे पहाड़ को लेकर पूछने लगे, अरे इतने दुर्बुद्धि कैसे हो गया उन लोग का। महाराज एक बालक है छोटा सा, 7 साल की उम्र बालक, उनका बुद्धि फेर दिया, सारे बड़े बूढ़े सारे उन्हीं के तरफ हो गए और जाके पहाड़ को पूछने लगे, आपको तो देखे ही नहीं, गए सारे छोड़ छाड़ कर। इंद्र को तो भारी अपमान लगा, ऐसे भी देखिए, आप सभी इस बात को अपने आप को पूछ कर देखिए, एक गुण हम सभी में भी है, देवता तो हमें, हम जैसा कोई जीव होता है और क्या है। अगर आप में से किसी को भी कोई आपसे कोई जूनियर हो जो आपको कभी भेंट करेगा, माता जी प्रणाम, कोई प्रभु जी प्रणाम, डेली आपको प्रणाम करता था 3 बार, जब देखे त्रिसंध्या करता है आपको सुबह दोपहर शाम कंटिन्यूअस 2 साल तक करता, तो आप कितने उनका प्रसन्न होंगे क्या, अच्छा बिल्कुल उनको तो आप बोलेंगे मेरा ही हो तो, हाँ बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत पसंद करेंगे। 2 साल तक प्रतिदिन आपको सम्मान से प्रणाम कर रहा है, 2 साल के बाद एक दिन आप इधर से आ रहे हैं, आपके साथ कुछ और जेंटलमैन, कुछ भद्र व्यक्ति आ रहे हैं, वो देखिए लड़का है, आप आशा कर रहे हैं जरूर प्रणाम करेगा, आप तैयार हो रहे हैं, वो आपका सामने आया मुंह मोड़ के चल दिया, प्रणाम तो नहीं किया उल्टी मुंह मोड़ के चल दिया, देखा गया। अब आप सोचिए आपको उनका प्रति क्या मन में भाव आएगा, थोड़ा आप अपने आप को पूछिए, अगर मिल जाए यही मरोड़ दूं उसको, यही सा हो गया। अरे भाई तुझे दूसरे बालक तो एक बार भी सैल्यूट प्रणाम नहीं किया, उनके ऊपर गुस्सा नहीं होंगे, जो आपको प्रणाम 2 साल से करत उसी के ऊपर सबसे ज्यादा क्रोध हो, क्यों नहीं किया, है ना, वही भाव है। इंद्र को आसपास में ना अलीगढ़, आगरा, हाथरस वाले कोई कुछ नहीं पूजा करते, पूछ नहीं रहते, राम राम ही नहीं करते थे उसको, उनके तरह कोई दिक्कत नहीं, उनको कर नहीं रहते। ये बेचारे ब्रजवासी सकड़ों साल से उनको बड़े श्रद्धा से पूजा करते आ रहे थे, एक बार भी उनकी तरफ से नहीं, किसी ने उनको समझा दिया और नहीं किए। आप इंद्र तो बोला कि पूर्ण नाश कर दो, विनाश कर दूंगा, मार दूंगा सारे, कोई बच्चे उड़े, कोई गाय बछड़े तक नहीं बचाने दूंगा, पूरा विनाश कर दूंगा। इतने क्रोधित हो गया, पूरी ताकत लगाया ब्रज को ध्वंस कर देने के लिए, संपूर्ण ब्रज को खत्म कर देना चाहा। अब जो उनका ताकत था फुल लगा दिया, सारे मेघ तूफान झड़झड़ी वज्र जो भी सब लगाया, बोला मैं खुद आ रहा हूं रावत से चढ़ के, खूब युद्ध हो जाए। अब जब बारिश इस पर होने लगा तो सभी का तो रखे कि भगवान पर थोड़े बोले देखो अभी इंद्र निकुपित हो गए क्या करे भगवान, कोई बात नहीं गिरिराज जी की पूजा के वो बचाएंगे, चलो दौड़ करके सारे गोधन पशुधन लेकर गिरिराज जी के पास पहुंचे। अब गिरिराज जी तो पहाड़े हो क्या करेंगे, कोई बात नहीं छत्री बन जाएंगे, स्वयं उठा लिए वाम हस्त के कनिष्ठ अंगुली में उठा दिए। आपको जरूर कितने साल बारिश सीजन आप गुजारे होंगे, खूब बारिश के समय में कई साल से पड़ा हुआ है कि छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ होगा आंगन में कहीं, बारिश के समय पत्थर को जाकर उठा देंगे, उसका नीचे क्या देखेंगे, कीड़े होंगे, फिलती जगह होगा, कीचड़ होगा, यही तो होगा ना, कोई अच्छा जगह थोड़ी होगा। अभी इतने बड़े पहाड़ इतने घोर बारिश से उसको उठाएंगे, उनके जितने बिच्छू कीड़े इतने सब होंगे और क्या होंगे, साफ बिच्छू होंगे, कोई हिलती कीचड़ मिचड़ होगा, उसके अंदर कोई रहने का खड़ा रहने का जगह होगा क्या। लेकिन भगवान ने जब गिरिराज जी को उठा दिए, उसके अंदर सारे गोप गोपी बालक बालिकाएं गो बछड़ा संपत्ति सब लेकर आगे बोले सब आ जाओ, उसका अंदर प्रवेश किए, उसका वर्णन ऐसे प्राप्त होता है कि अभी तक ये विंश शताब्दी तक विज्ञान इतना एडवांस कर चुका है, टेक्नोलॉजी हाईटेक हो चुका है, लेकिन इतने बढ़िया भवन अभी तक निर्माण नहीं करके सोच भी नहीं सकता जिस प्रकार के वातावरण भवन वहां बनाया हुआ था गिरिराज जी के नीचे। बड़ी ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी लगा करके हम वातानुकूलित करते हैं, वो भी करंट फेन होने से खत्म हो जाता है, सांस नहीं ले सकते, बाहर से दरवाजा बंद, अंदर के अंदर सांस, जो उसी से लेकर के उसको बोलते हैं एयर कंडीशन्ड, हम खुद कंडीशन हो जाते हैं, एयर कंडीशन क्या होगा जो भी हो बहुत ज्यादा सतह यहीं तक पहुंचे अभी तक ना, एयर कंडीशन के ऊपर नहीं कर पाए। लेकिन भगवान ने जो गिरिराज के नीचे जो भवन हल बनाए वो तो नेचुरल एयर कंडीशन था ही, बिना इलेक्ट्रिफिकेशन, बिना जनरेटर, बिना कनेक्शन वायरिंग में। एयर कंडीशन मतलब कभी कभी ज्यादा ठंडी लगता है, केवल गर्मी ठंडी यही कर सकते हैं, नहीं, जितने टेम्परेचर आपको आवश्यकता है बिने रेगुलेटर में, बिने लाइन में, बिने को तक रेगुलेटर, और केवल वेदर प्रूफ नहीं है, मतलब ठंडी और गर्मी की कंडीशन का कंट्रोल की नहीं, उसके अंदर से ये प्रूफ था कि आपको भूख भी नहीं लगे, प्यास भी ना लगे, कोई चिंता टेंशन भी ना आए, टल्ट बाथरूम के सवाल ही नहीं उठता। आप बोलेंगे कोई अच्छा बढ़िया हाल बनाए, बहुत बढ़िया टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी भी, फैसिलिटी जरूरत नहीं, टॉयलेट बाथरूम लगेगा ही नहीं, काम ही खत्म, कोई ना खाने का जरूरी है, ना पीने का जरूरी है, ना जाने का जरूरी है, कोई नो इनपुट नो आउटपुट नथिंग अरे और तो और नींद भी नहीं लगेगा, भूख ना लगे, नींद ना लगे, कोई टेंशन, सब इतने केवल खुशी खुश आनंद ही आनंद और कुछ नहीं, दुख सोचना ना, शोक मोह नथिंग, कोई टेक्नोलॉजी सोच कर भी ऐसा नहीं बना सकते ऐसे वातावरण, सभी के लिए इतने बढ़िया, बैठो खड़ा हो जाओ, कोई लेटो जो चाहे ऐसे व्यवस्था, भूख प्यास तो लगेगा नहीं, थकान लगेगा नहीं, कुछ लगेगा नहीं, 7 दिन 7 रात कैसे टाइम गया क्या हम कोई पता नहीं, सभी केवल एक ही काम कर रहे थे, सारे लाखों संख्या में ब्रजवासी, वो गाय बछड़े बैल तक 7 दिन 7 रात तक तो कुछ काम ही नहीं था, खाना पीना किचन भिंजी सब बंद, ना कपड़ा धोना है कुछ, नथिंग, कोई काम दाम नहीं है, ना नींद लगता है, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना कुछ नहीं, 24 घंटा तक करते क्या, बोर नहीं होते, नहीं पूरे बिजी थे, फुल 24 घंटा काम में लगे थे, जानते क्या काम में लगे थे, एक टक अपने आराध्य ईश्वर को, हृदय ईश्वर को देख रहे थे, एक टक दोनों आंखें खोल करके अपलक नयन से देख रहे थे, वो उनको देख रहे थे, उनको देख रहे थे, भर भर करके देख रहे थे। इस बात को याद कर रहे हैं आज स्त्रियां, मथुरा नगर के नागरी नारी जिन्होंने छात के ऊपर, छज्जे के ऊपर, खिड़की के अंदर खड़े होकर के देख लिए एक झलक दर्शन कर लिए, आपने आपको बड़े गौरव बड़े सम्मानित माने कि भगवान ने जाते समय में मोड़ करके अपने तिरछी चितवन से उनके ओर एक दृष्टि डाल दिए। इस स्मित हास्य और तिरछी चितवन में उनके ऊपर अमृत बरसा हो गया। एक सेकंड के लिए भी आपने आपको इतने कृतार्थ निहाल हो गए, हो गया। आपने आंख के द्वारा भगवान के इतने पराक्रम सुनते सुनते उनके हृदय तो पहले से पिघल जा चुका था, मेल्ट हो चुका था। इस मेल्टेड हार्ट में, इस ओपन आईज में, खोल करके आंख में इस छवि को भर लिए, जैसे पीते हैं ना, पी गए भगवान की रूप सुधा को, पी गए आंख से, पी करके हृदय में उतारे इस सुंदर भुवन मोहन रूप को, खूब हृदय में लेकर के आलिंगन करके बैठे, पूरा शरीर पुलकित हो गया, आंख से धार धार आंसू बहने लगा। अब भगवान आगे चल पड़े, बोलते कोई बात नहीं, मैं तो हृदय में ले लिया आपको। आप थोड़ी देर में सावधान होकर उठकर बोलते हैं, हाय हाय, एक झलक दृश्य से मेरा तो निहाल हो गया। धन्य है गोपी गोप जिन्होंने हमेशा के लिए, मैं तो सुना कि गिरिराज जी के तलेटी में 7 दिन तक 24 घंटा तक देखते ही रहे, कितने भारी तप, कितने जब, क्या क्या नहीं किए होंगे उनको, ये सुंदर प्रफुल्ल मुखचंद्र जिसको दर्शन हुआ इतने लंबे समय तक, कितने महाभागे होंगे उन्होंने उसको याद कर रहे, कितने सौभाग्यवान होंगे जिनको इतने लंबे समय तक के रूप को देखे। हम तो एक झलक झांकी से हमारा, आप जो थोड़े थोड़े पीछे देखते, थोड़ा देखा पड़ा, पूरा नहीं देख पाया, वो दौड़ा, अरे नहीं इस घर के ऊपर जा रहा हूं, वहां से निकल गया, वहां ठीक से दिखाई पड़ेगा, यहां दिखाई पड़ेगा, तो और कौन किसके ऊपर चढ़ते हो कूदते हो, कोई देखते नहीं, लाज शर्म सब खत्म, भागे दौड़े गए। और जो देख लिया, अब हाथ में जो आया, दुर्बांकुर है, घास है और अक्षत है, रोली है, अबीर है, फूल है, जो आया फेंका, वर्षा करने लगा, पूरे मथुरा के राज रास्ता भर गए आज इस मांगलिक द्रव्य से, सब वर्षा कर रहे थे, दधि अक्षत सिंदूर रोली सब, हाय 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 हाय, क्या रूप है, क्या रूप है। मत्त गज की चाली में दोनों राम श्याम अपने सखाओं के घिरे हुए सखाओं के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मथुरा जनपद के सारे बड़े बड़े सम्भ्रांत पुरुष भी, राज पुरुष भी लाइन करके स्वागत माल्य, पुष्पहार लेकर के, फलभार लेकर खड़े हैं उनको स्वागत के लिए। सभी का मन में एक सोच था, ये बालक तो गवार हैं, वन जंगल में रहते थे, सिटी तक भी देखे नहीं, पहली बार आके देखेंगे, इतने भारी भवन, इतने सुंदर रत्न से, हीरे से, मणि से बनाया हुआ है, इतने सुंदर सफाई है, सुगंध है, इतने सुंदर सजावट है, वो सब देख करके आके छुएंगे, बहुत चकित थकित हो जाएंगे, पूछेंगे कई बार में क्या है ये कैसे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं हुआ, वो दिखाई उन लोग कुछ लगता नहीं, लगेगा क्या उन बालकों के झुंड से। एक बालक बोला भी सही, बोला अरे कन्नू, ये नगर के लोग पिंजड़े जैसे ही भवन में कैसे रहते हैं, उनको सांस घुट नहीं जाता, इसे बंद बाहर से बहुत भारी दीवार लगाया, उसके अंदर भी भवन दीवार बहुत है, छोटी छोटी खिड़की है, उसी के अंदर पिंजड़े की तरह से बैठते हैं, इसे चिड़िया रहते हैं, इसे रहते हैं, हमारे जो फ्लैट सिस्टम है ना सब ऐसा ही है, इसे कैसे रहते हैं, ऊपर से देखते हैं, इसे चिड़िया जैसे देखता है कैसे रहते हैं जीवन इसमें, कैसे नहीं बोलेंगे उनको, जिनका जन्म से उनका दिन बिता बिल्कुल मुक्त आकाश के नीचे, स्वच्छंद बनाने में, जमुना तीर बनचारी, जमुना के तीर पर खुले वन में, पूरे वन में फल भरा हुआ वृक्ष के नीचे, पुष्प से लदी हुई लता बिरुद के अंदर, बड़े सजी धजी कुंज के बीच में, बहुत सारे चिड़ियों के कुजान के अंदर कई भ्रमर आकर के संगीत करते हैं, इस प्रकार सज्जित कुंज के अंदर जो अपने दिन बिताए खेलते कूदते, आज ये बंद एक कुठरी के अंदर, कमरा भी अटैच, उसमें टॉयलेट बाथरूम भी अटैच कमरे के अंदर सब। बोले कैसे, उनको तो पसंद ही नहीं हुआ। मन ने बोले कैसे रहते हैं, कोई उनको देखने के लायक कोई उनको लगा नहीं, क्या है कोई देखने के लायक है, बेकार है सब। इसी को बोलते नगर, इनके मन नहीं करता, कोई पसंद नहीं किए। पूरे सजी धजी मथुरा नगर में ना तो राम श्याम को ना तो उनके सखाओं को गोपाओं को कोई देखने लायक चीज अब तक कोई मिला नहीं। बोले क्या नहीं, ये सोने चांदी तो हमारा पहाड़ में इसी की पड़ा रहता है, सुकून उठाता है। कोई नहीं पूछे, आगे चलते चले जा रहे हैं, दोनों तरफ से खचाखच भीड़, दोनों बालकों के अंदर इतने गौरव तो है उनके चाली में उनके रूप में, दोनों तरफ से भीड़ कातर दृष्टि से उनको देखता है, थोड़ा हमारे और देख लें, हमारे भेंट स्वीकार कर लें, हमारे आरती देख लें, हम इसको फूल फेंकते थोड़ा स्वीकार कर लें। बहुत लोग दोनों तरफ से सेवक सेवकाएं ब्राह्मण बस्या शूद्र सब बड़े आतुर कातर होकर के खड़े हैं। दोनों जुगल राम और श्याम ने सभी को धन्य करते हैं, दोनों तरफ दृष्टि उठाकर जहां देख लेते हैं, जिस तरफ दृष्टि उठाकर के देख लेते हैं उस दिशाएं धन्य हो जाता है, उस घर उस लोक वाक जितने जो कुछ द्रव्य सब कुछ कृतार्थ हो जाता है। किसी को छू करके, किसी को देख करके, किसी को एक स्मित हास्य देख करके, किसी को थोड़ा मुंह हिला करके, सबको धन्य धन्य कृतार्थ करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई आरती करता है, कोई सस्ती वाचन करता है, कोई अक्षत फेंकता है, कोई फूल फेंकता है, कुछ करता है। इतने गौरव, इतने सुंदर, वाह, बहुत सुने थे। यही बालक है। हाँ हो, खूब जरूर है, ऐसा ही है। सब परितृप्त होते थे और कृष्ण बलराम तो आगे बढ़ते चले जा रहे थे। लाखों संख्या में जो जनता दोनों तरफ से भीड़ था, सब देख करके वो तो भीड़ से आगे नहीं बढ़ सकते, भीड़ इतनी ज्यादा था कि चलने के लिए पैर जगह नहीं होता था। जहां देखो तहां भीड़ जुटा हुआ है। जो यहां रुक जाते थे, आंख से तो रूप आगे चला जा रहा था, रूप सिन्हा आगे बढ़ गया, लेकिन ये पीछे खड़े सिन्हा हुए, लेकिन उनका नेत्र, उनका प्राण, उनके मन उन्हीं के साथ चल गया, उनके साथ वो भी चला पड़ा, शरीर ही रह गया, बाकी वही उनके साथ चल पड़ा। अब चलते चलते मथुरा के राज रास्ता पर आगे बढ़ रहे हैं, कई जगह पर चौराहे पर भारी भारी राज की पुलिस सेंट्री गार्ड सब सशस्त्र वाहिनी खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं, देख करके वो भी ताजुब हो रहे, ऐसे लड़के पहली बार सुने तो वो भी देख रहे कैसे है क्या है। एक घटना हुआ, इतने दोनों तरफ भीड़ है, मेन बाजार के अंदर जा रहे थे, देखे कि वो दूसरी तरफ से एक व्यक्ति आ रहा है, बड़े लंबे चौड़े तगड़ा व्यक्ति। अब वो व्यक्ति पता चला वो धोबी तो था, जन्म से तो धोबी था, लेकिन धोबी का काम नहीं कर रहा था, रंगकार था, कपड़ा रंग रहा था, और उसका असिस्टेंट बहुत थे, सकड़ो धोका सुखाना ये सब करना सो कर रहे थे। तो वो आ रहा था, उनका पीछे सकड़ो सेवक उनके अनुगत आ रहे थे। सभी ने अपने अपने कंधे पर सोने की डंडा, सोने की छड़ी ऊपर हैंगर बोलते ना, हैंगर लगा करके बड़ी सुंदर सुंदर रत्न मणि जटित वस्त्र बिल्कुल सजा करके सुनय ने टांग करके अनेक वस्त्र लेकर के सपड़ो आदमी लेकर के चलते थे उनके पीछे। वो जो राज के रंगकार आ रहा था, देखने के लिए तो भारी मोटे तगड़ा चौड़ी छाती था और 7.5 फुट हाइट, कज्जल काला वर्ण का था, बड़ी कीमती कमीज पहना था, गले में मोटा सोने की चेन, बड़ी काली गलमुछे, अमिठी मूछ था उसका, सर पे बिल्कुल सोनेरी कलर के जालीदार सतरंगी पगड़ी बांधा था और खूब मदिरा पान करके आंख बिल्कुल लाले लाल चल रहा था। ऐसे ऐसे अकड़कर चल रहा था मानो स्वयं मथुरा नरेश हो। हाँ क्यों, एक तो महाराज की कृपा पात्र था, रयाल धोबी था और उनके पीछे सकड़ों उसके अनुगत अनुचर थे। केवल इतना नहीं, आज काल के उत्सव में महाराज श्री जो वस्त्र पहनेंगे उसी वस्त्र को वो लेकर जा रहा था, साथ में था। केवल राजा के नहीं, राज परिवार के और महाअमत्य महासेनापति आदि आदि पूरे रॉयल कोर्ट के जितने भी सभी का जो नए वस्त्र काल के उत्सव में जब पहनेंगे सभी वस्त्र उन्हीं के पास था, सब लेकर जा रहा था। और ऐसे लेकर जाना था कि किसी कोई सिकुड़ ना आ जाए, कोई आंच ना आ जाए, बिल्कुल सतर्क के सब उठाकर जा रहा था। तो इसलिए अपना भाव दिखाने के लिए वो पूरे दिखा के, मथुरा में दोनों तरफ खूब भीड़ है, सबको दिखा देना चाह रहा था कि मैं भी कुछ हूं। इसलिए वो देखा कि चांस है, अभी अपना शाम दिखा लेना चाहिए। तो बिल्कुल अब अकड़ कर चल रहा था और उनके पीछे पीछे होंगे तो बड़े ऐंठ करके वो भी चल रहे थे, है हमारे दादा ऐसे हैं और क्या। और काल उत्सव में सारे रॉयल फैमिली जो पोशाक लेकर जाएंगे उस पोशाक को लेकर उनको देना था। वो तो आज मान रहा था कि पूरे मथुरा के जो रॉयल रोड है, राज रास्ता है, उसके ऊपर उनका पूरा ही सत्व है और किसी का सत्व नहीं। अगर किसी को रास्ते में जाना हो तो हट करके किनारे होकर के अपना चले जाए, पास करके उनके सामने ना आए। दोनों तरफ से मथुरा नगर के बड़े बड़े सम्भ्रांत पुरुष हैं, कई राजपुरुष है, कई श्रेष्ठ ब्राह्मण है, कई नगर जमींदार होते हैं, बड़े बड़े पुरुष हैं विद्वान, किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। विनम्रता क्या चीज सिखाई ना, पता ही नहीं विनम्रता भट्टी छा पता है। बड़े इसे अकड़ के चल रहा था। यहां से गोप बालक समेत कृष्ण बलराम देखे तो बड़े उदंड होकर आ रहे भाई, सब उनको देख करके बड़े बड़े लोग भी साइड होकर चले जा रहे हैं कि हमको साइड होकर जाना पड़ेगा, हम तो नहीं चलना, हम साइड नहीं होना चाहते, आप भीड़ में बीच में चलते हैं, हम तो हीरो हैं, हम क्यों साइड होंगे। अब क्या करें, किसको पूछें, दाऊ दादा है कि नहीं है, वो जैसे करेंगे हम भी उनके साथ हैं, उसे क्या है। लेकिन अच्छा नहीं लगता लड़का, ये आदमी बड़ा उदंड लगता है। वो उनको देख रहे ऐसा सोच रहे हैं, उनके तरफ से वो देखा लाल लाल करके, बोले ये लड़के कहाँ के, तो हमारे मथुरा के लड़के तो है नहीं, मथुरा के लड़के तो लगते नहीं हो। इनको पूछा कोई, बोले ये तो आए हैं, ये ब्रज से आए हैं ना। अच्छा वो गवार गाय चराने वाले लड़के ना, हो आए, वो सोच रहा था गाय चरा लेते सिटी में, पहली बार है, मैं जाऊंगा तो ऐसे ही भाग जाएंगे इधर उधर कहीं। लेकिन ये तो अकड़े, वो जैसे अकड़े ये कोई कम है थोड़ी, गोप है वो तो महाअखाड़ू है, और पढ़े लिखे तो है नहीं। हाँ भगवान के गांव में स्कूल कॉलेज था नहीं, शुरू से ही बछड़े के पूछ लेकर के गोर गोबर गोमूत्र में लोटपुट है करके वही सीखना, ट्रेनिंग वही हुआ, कोई पढ़ा लिखा ABCD आई नथिंग, कुछ नहीं, कोई किताब कलम पेन खाता कुछ नहीं, वहां मुरख है वो कहीं समझेंगे भाई। धोबी जैसा है, गोपाल हरी हुई ऐसे, अब दोनों का भीड़ हो जाएगा अभी सामने, वो बोलते हम नहीं हटेंगे, तू कैसे नहीं हटेगा। अब तो वो एंट आ गया सामने, सारे लोग उत्सुक से देख रहे हैं दोनों का अभी क्या मैचिंग होगा, क्या होने जा रहा है, ये तो बड़ा उदंड है सब जानते हैं, और राजा का पूरा सपोर्ट है उनका साथ, राजवस्त्र लेकर जा रहे हैं सारे रॉयल ड्रेस, अब क्या होगा, लड़के भी तो मान नहीं उठ नहीं रहे, क्या होगा। जैसे थोड़ा नजदीक आया कृष्ण ने थोड़ा आगे बढ़ के उनके पास बड़े जेंटिल भाव से जाकर बोले, अरे रंगा देखो हम तुम्हारे आदरणीय है। वो देखा, देखता क्या है, तुम्हारे राजा का आदरणीय भागिने है हूं, उनका मैं भांजा हूं, मुझे स्वयं बुलाए इन्विटेशन देकर वीआईपी पास में, और ऐसा करो हम गांव में रहे गाय चराते थे, हमारा ड्रेस नहीं पक्का, अब राजा के नगर में आए तो अच्छा ड्रेस थोड़ा होना चाहिए ना, तो इतने सारे ड्रेस हमको दे दो ना, हम सबके लिए थोड़ा सा ड्रेस दे दो, अच्छा कोई नहीं। उनको सुन करते उनको इतने पहले से गुस्सा में था कि वो रोड साइड नहीं दिए उसको, एक तो साइड नहीं दिए गुस्सा में था, साइड क्या दे उल्टी आ कर उसको मांग रहा है सारे कपड़े दे दो, एक दो नहीं सभी के लिए। उनका तो क्रोध पंचम स्तर पर आके पहुंचा, आप देखा उनसे लाल लांग करके बोला, अरे जंगली गवार कहीं के, कभी ऐसे वस्त्र देखा आपने, पहनने के लिए योग्य है तूने, बोलता है कि कपड़ा दे दे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मेरा कल्याण करने के लिए है तूने, भाग जा जल्दी यहां से, जीवित रहना चाहते तो नहीं तो अभी पुलिस आएगा पकड़ कर सब ले जाएंगे, सब बांध करके मारेंगे पीटेंगे। अरे ये इससे ही बकते गया उस घमंडी राजपुरुष राज सेवक ने, खूब गाली देने लगा उनको, बच्चे बच्चे लोग तो आपने अपने लाठी कस लिया हाथ में, बोले पीट देंगे सले को, लेकिन बोले सामने कन्हैया है कुछ करे देखे, हम तो पीछे हैं, बिल्कुल तैयार थे पिटने के लिए, उनको डर नहीं, बोलते कन्या साथ में क्या है। अब इतने में उनका गाली सुन करके कृष्ण भगवान के मुख में थोड़ा अरुण बन गया था, थोड़े लाल हो गया था, सभी देख रहे हैं पूरे दोनों तरफ से लाखों भीड़, सब के नजर वहीं पे क्या होने जा रहे। भगवान ने देखते देखते पलक झपकते भी नहीं, इतने में देखे कि धड़ से रास्ते के ऊपर उनका सर उछल रहा है, क्या हो गया क्या हो गया, जो क्लोज स्नैप लिए थे वो देखे कि भगवान ने दाहिने हाथ उठाए थे, हाथ उठाए थे केवल, हाथ उठाए के हाथ नहीं लगाए पूरे भी नहीं, इसे अंगुल्याग्र ये हाथ ऐसे कर दिए, ऐसे ही कर दिए, इतने में ही उनके शरीर के ऊपर से सर उतर करके नीचे नाच रहा है, ऐसे जैसे पड़ा था उठाकर फेंक दिया भाई, हाथ में थोड़ा सा ब्लड छिटा लग गया था। अरे बाप ऐसे हाथ कर दिया, टच भी नहीं किया, गला उतर गया उसका है, अब रक्त की फवारा छूट रहा है, वो सर नाच रहा है पड़ करके। अब उनके पीछे जो अनुगत अनुचर थे धड़ाम से सारे कपड़ा सारे जो हैंगर फांगर वहीं फेंके, स्ट्रेट मुंह मुड़े बिहाइंड एक बार ब्याग गियर लगे भागे, बाप रे बाप, हम भाई धोबी हम सुने थे ये लड़के बहुत असुर मार दिया, हम कोई असुर फसुर नहीं बाबा, हमारा पेट भरना है फैमिली, हम भागे चले। अब जैसे दौड़े बच्चे सब ताली बजा दिए, जैसे ताली के आवाज सुने बोले हमारा पीछे साथ पड़ गए, चलो भागो और स्पीड हाई स्पीड दौड़े, पीछे ना मुड़ करके दौड़े जो दौड़े सीधे जाकर कोई किधर गली में तितर बितर होकर भागे और कोई देखे ही नहीं, मथुरा सिटी से बाहर चले गए, फिर नहीं आए मथुरा में, बोले चलो हमको भाई रहना नहीं मथुरा में, अरे बाप रे बाप ही बच्चों हम सुने थे। दोनों तरफ से पूरे जनपद के सर्वसाधारण सबका मन में एक शब्द गूंजता है, ओ इसी को कहते हैं तेजस्विता, ये है शक्तिमता, सुने थे खूब खूब सुने थे उनके बल प्रिय पराक्रम के, आज प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष देख ली क्या कमाल कर दिया। अरे खुले बीच बाजार में दिन दोपहर में लाखों की भीड़, सारे पुलिस खड़े हैं सशस्त्र, उनके बीच में ऐसे हरा दिया, कोई सब पड़ा है उसका सर उतार दिया, और ऐसे उतार के देखा नहीं ना क्या, अरे उनके ऐसे वो राजा के कपड़ा में उतर के ऐसे हाथ पूछ रहे जैसे गिला होता क्या कपड़ा, आपका गिला हाथ उसे हैंड कर रुमाल में पूछना ऐसे पूछ रहा है, कोई डर नहीं कोई चिंता नहीं कि मर्डर कर दिया करके, आप किसी को मर्डर कर दे आपकी मैंने गलती से, आप जानबूझकर नहीं, बाय चांस किसी का आपका दोस्त निर्दोष में किसी का मर्डर हो गया तो आपका छाती धड़धड़ धड़धड़ कितने डर होगा। आपका गांव नहीं, आपका घर नहीं, वो दूसरे राजधानी था, कैपिटल सिटी कंस का, और उन्हीं का महा राज के रंग का भरी बीच बाजार में दिन दोपहर में सारे लोगों के सामने, पुलिस के सामने ऐसे मार दिया। सारे लोगों के अंदर तो आंख फाड़ कर पूछे, क्या बात है भाई, कमाल, कोई दूसरी बात कर रहे, यार तू क्या सोच रहा है। काली सुबह, पता नहीं हम सुने थे काल सुबह कंस राजा का जो मुख्य सेनापति केसी था उसके गले में हाथ डाल करके ऐसे मार दिया उसको। तो केसी जैसा महाबलशाली के सामने ये धोबी क्या था, ये तो एक मच्छर था, उसके तुलना में देखो मच्छर जैसा है ये। आप कभी कोई मच्छर को मार देंगे सोचेंगे मर्डर कैसे हो जाएगा, डरेंगे कि मच्छर, अभी आप कथा सुन रहे हैं कोई आगे बैठ गया मच्छर को मार दे हटा दिया तो आप सुनेंगे पुलिस आकर अरेस्ट करेगा मैंने मर्डर कर दिया मैंने, क्या डरेंगे क्या, तो क्या हो डरेगा भाई, मच्छर मार दिया। हाँ सही बात है, ये हाथ तो ऐसे कि हम मच्छर को भी ऐसा नहीं करते, जैसे कोई मच्छर को भगाने मारने के लिए हाथ ऐसे कर देते, इतना ही तो किया उन्होंने, इतने में मर गए। सचमुच उनके लिए तो मच्छर ही था, मच्छर को मारेगा तो काहे को सोचेगा कि मर्डर क्या करके कोई चिंता करेगा नहीं, कोई बोलेगा तो मच्छर को मार दिया क्या हो गया, उसने मर्डर कैसे लगता है क्या इतने निर्भीकता है। कोई बोलते भाई कंस राजा पुलिस नहीं भेजेगा, कच्चू भेजेगा, पुलिस भेजेगा, देखना कुत्ता भी नहीं आएगा उनका सब शुद्ध के लिए, पुलिस क्या है, उनका घर वाले भी दिन में नहीं आएंगे, रात को उठा कर ले जाएंगे कि नहीं पता नहीं, देखना वही पड़ा है सबका सामने। मानो चुनौती दे रहा है, रे राजा कंस जो करना है कर लो आकर के, देखो तेरा सामने तो मार के गया। सारे लोग तो त्रस्त खड़े होकर देख रहे थे और उनको ऐसे मर्डर करके रक्त बह रहा, छट छट मर रहे हैं, ओ कृष्ण अब बच्चे ताली मार रहे हैं, आगे चल गए जहां से वो कपड़ा फेंक कर गए थे ना, कपड़ा के पास पहुंच गए, जाकर इधर उधर करके भगवान ने के फर्स्ट क्लास नीले वर्ण के सुंदर कपड़ा लेकर के, भैया ये आपके लिए चचेगा, देखो ना पहन करके उसको बड़े भाई को दे रहे हैं। बड़े भाई तो अनुज के प्रति बड़े कृपा रखते हैं, लेकर के उसको मढ़ा लिए। आप केवल दृष्टि किए साथियों के ऊपर, दृष्टि से वही इंगित मिला हमको कि आपने अपने पसंद में सब चुन लो सो अपने मन पसंद की, अब सब अपने आपने उठाने लगे, लेकिन कभी तो पहने नहीं थे, फर्स्ट टाइम इन लाइफ कपड़ा पहनने जा रहे हैं, पहले जन्म से अभी तक कपड़ा कभी पहने थे, टेलर फिलर थे सिलाई कभी पहने नहीं थे, पहली बार पहनेंगे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे पहने हैं कपड़े को पहनना तो आता नहीं किसको, उठाते हैं दूसरे को देखता है ये कौन सा उठाता है कैसे करता है, वो इसको देखता है फिर फेंकता है फिर उठाता है फिर उठाता है, ऐसे कई अधड़ उन्हें फंस कर जैसे तैसे एक एक सब उठाए, पहनना तो किसी बात नहीं था, बस राजकीय वस्त्र था, बड़े सोने चांदी के सिक्के टंगा हुआ था उसमें, सब ऑरिजिनल सजा हुआ था सब, तब वो जो पहने थे कचनी पटुका उसके ऊपर लिपट लिए मढ़वा लिए बस, पहनना थोड़ी आता, कोई साइज फैत के तो था नहीं उनका। तो जैसे भी हो अब राजघराने में जाते हैं तो राज के पोशाक पहन लिए सब, ऐसे ऐसे इधर उधर बांध बूंध लिए, अब चले, अब इस कपड़ा किसी उत्पन्ना पहुंचने में तुमको अच्छा लग रहा था, अगर ढंग से पहने तो और अच्छा लगते। तब आगे बढ़ते हैं तो सारे जनता देख रहे हैं कि बताओ सचमुच अभी हमारा जो मथुरा के राजा तो यही है, यही वसुदेव कुमार सचमुच मथुरा के राजा तो यही होना चाहिए। सभी का मन में, जन जन के मन में यही आया, वो बात निकल ही पड़ा, कोई बोला भगवान वासुदेव की जय हो, सबका मन में गूंज उठा, सबके मन की बात, यही भगवान वास्तविक भगवान कितना ऐसे मर्डर करके राज रास्ते में आगे पोशाक पहन करके, और ऐसा नहीं बहुत सारे राज पोशाक है उनका पड़ा है कि मैं दो चार और ले लूं, हम अगर होते ना अपना तो एक लेते और पांच सात ले लेते उठा कर ले लेने वाले, कोई नहीं पढ़े लिए नहीं पढ़े लेते सब, सोने के डंडे पड़े हुए हैं और पड़ा हुआ है मोहर पोशाक कोई देखे नहीं, बिल्कुल अनासक्त अपना अपने पसंद के कपड़ा उठा करके लपट करके चल पड़े। अब तो भीड़ रुकने वाला नहीं है बाबा, एक चमत्कार हो गया, अब तो मानो ओपनिंग हुआ इसे, उस दिन का ओपनिंग किए मर्डर के साथ। अब तो सारे जनता तो मानो बोले अरे, पूरे भीड़ उमड़ पड़ा, जो भी दूर में था वो भी दौड़ा, बोला कुछ भी तो देख लूं, साथ में भीड़ चल रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखते देखते आगे देखे कि थोड़ी देर आगे जा करके एक दर्जी था गुणाक, वो बायक था, टेलर था, वो मथुरा राजधानी में सबसे श्रेष्ठ बायक वो था। वृद्ध था, पतला था, ऊंचाई शरीर था, पतला शरीर था, पूरा सर के बाल एक भी काला नहीं थे, सब सफेद हो गए थे, पूरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, लंबे लंबे अंगुली थी, लेकिन तब भी आंख में और हाथ में उनका स्फूर्ति था, तेज था, बड़े उच्च कोटि का साधक था, अपने कला के धनी था। केवल मथुरापुरी में नहीं, उनका नाम आसपास के बड़े बड़े नगर में, बड़े बड़े कैपिटल सिटी में भी जो सब माने जाने दर्जी हैं, वो लोग अपने आप को बोर्डिंग में लगाते थे कि हम मथुरा के गुणक से पढ़कर सीख कर आए हैं, उनके चले हैं, इस इंस्टीट्यूट के हैं हम टेलर, अपने आप को डिग्री मानते थे, अपने सम्मान मानते थे कि हम यहाँ से सीखें, इनसे हम सिलाई कला सीखें। और सचमुच ज्यादा कुछ से बात नहीं करता था, कभी अपने दुकान से नीचे नहीं उतरता था, अपना काम से बोला था, कोई बातचीत नहीं करता था, कभी कोई काम पड़े बात करने के लिए धीरे से थोड़ा बोल देगा, उनके बात सुनने के लिए ध्यान से लगाकर सुनना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा बोलेगा भी नहीं। कला तो था उनके पास में, लेकिन सारे कलाकार का एक गुण भी ऐसा ही होता है, उनका भी एक थोड़ा मान रहता है, वो कहीं नहीं जाता था कहीं किसी का, यहां तक कि महाराजा को भी अपना ड्रेस सिलाने के लिए वहां माप देने के लिए आना पड़ता था, वो नहीं जाएगा मना देने के लिए, और सेवक भेज कर कपड़ा लेना पड़ेगा, वो नहीं जाएगा देने के लिए कि लाने के लिए, अपना दुकान में बैठता था। कभी कभी कोई विशेष पर्व परवाड़ी में अपने दुकान से उतर के जमुना जी के स्नान करने जाता था, बस जमुना स्नान करके आके फिर अपना काम में रहता था। काम किया, इतने बड़ी एक्सपर्टीज था सिलाई में, कला कुशल में, काम करे तभी तो पैसा कमाए, काम ही नहीं करता था। और राजा का रॉयल टेलर था, राजा का वस्त्र सीता था, राज के परिवार में जो भी उनका वस्त्र सिला के था, बाकी कोई काम आया तो लेगा नहीं तो नहीं। और उनकी कीमत मुंह मांगे, जो मुंह में आ गया बोल दिया तो सोई, बार्गेनिंग नहीं करेगा ना। और बड़े बड़े लोग तो आपने को धन्य मानते थे कि वो राजी हो गया मेरे कपड़ा सिलाने के लिए, बस राजी हो जाए मानो इसमें काम बन गया, एक्सेप्ट नहीं करता था। और बहुत आसपास से बड़े बड़े टेलर तो लाइन लगा थे उनसे सीखने के लिए, वो तो सिलाई के विद्यालय खोले बैठा था। अब सारे नगर के जनता देख रहे हैं कि ये बूढ़ा आज क्यों नीचे उतरा भाई, कभी नहीं नीचे उतरता था, क्यों नीचे उतरा भाई, नीचे उतरा खाली हाथ नहीं, एक हाथ में कंची लिया हुआ है और एक कवर में एक छोटे से बटुआ बांधा है, उसमें सुई और धागा लिया हुआ है, उतरा, सब देख रहे हैं। आया बड़े संभ्रमता से, सम्मान भाव से आया, आ करके राम श्याम के सामने खड़े, बोले प्रभु अगर आप आज्ञा दें तो आपके जो उत्पटांग वस्त्र आप पहने उसको मैं ठीक ठाक कर दूं। भगवान बोले अवश्य, हम तो ही चाहते थे, ढूंढ रहे थे कोई है करने वाला, लेकिन हम थोड़ा जल्दी है, टाइम नहीं होता, शीघ्रता, हाँ कर दूंगा बस, कोई बात। अभी तक आपने तो जन्म समझते हम कपड़ा ही पहनते हैं, कितने प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, कभी ऐसा आपके कपड़ा में कुछ कमी आ गया, हाथ छोटा हो गया कि ये कम हो गया, इधर हो गया, तो आप कपड़ा पहने हुए बिना कपड़ा उतारे बिना दर्जी के पास गए कोई आके खड़े खड़े ठीक कर सकता है, हुआ कभी ऐसा? अब ये गुणक आ गया, बोलते नहीं नहीं पहने रहो, वहीं खड़े रहो, मैं करता हूँ अभी, ना पहले बड़े भाई का ना अभी करता हूँ। सब देख रहे हैं, सारे हजारों जनता भी देख रहे हैं। वो गया, कोई किसी को बोला नहीं कि घूमो फिरो करके, वो स्वयं घूम जाता था चारों तरफ, परिक्रमा उनका वो खुद किया। और देखते ही देखते चारों तरफ घुमा, कैंची उठाया, कहीं थोड़ा काटा, कहीं थोड़ा चांका टांका लगाया, कहीं थोड़ा ऊपर नीचे किया, कुछ किया। देखते देखते एक दो राउंड परिक्रमा करके, तीन राउंड परिक्रमा में ड्रेस फिट, ऐसे करते करते सभी को कर दिया, ऐसे फिट ड्रेस कर दिया, मानो बहुत पहले से पक्का नाप ले करके महीना दिन से बड़े सजत्न सिलाई करके फिट करके उन्हें पहनाए। ये ड्रेस ऐसे लगता था जैसे इन शरीर के लिए ये ड्रेस अति आवश्यक था, भी फिटिंग। कोई किसी को बोला नहीं कि वस्त्र उतारो, थोड़ा घूमो आगे पीछे, कुछ नहीं, थोड़ा इंगित किया, थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे करो, बस खुद अपने खींचा टाँका कुछ करके, ऐसे उनका हाथ चलता था, इतने स्फूर्ति था उनके हाथ में, जंत्र चालित, जंत्र भी फैल मार जाए, ऐसे उंगली चलता था, ऐसे काटता था, ऐसे करता था काम, इतने फुर्ति था, इतनी शीघ्रता था। अभी तक मथुरा नगरी में, महानगरी में इन ग्वाल सखे को आश्चर्यित करने वाला कोई चीज नहीं मिला था। प्रथम ये गुणक बुढ़ा मिला जिनको देख करके आश्चर्यचकित हो गए, हुआ क्या एक्सपर्टिस है, क्या काम है, ऐसे भी कभी संभव है, लेकिन क्या करके दिखा दिया, अद्भुत कला था उसके अंदर, सभी आश्चर्य होते थे। पहले तो जानते थे खूब बड़े कलाकार है, लेकिन आज सभी के सामने ओपनली दिखा दिया उन्होंने मैच। अब देखते देखते सबको उस वस्त्र बिल्कुल फिटिंग फिट बना करके इतने सुंदर दिखाई पड़ते थे राज के पोशाक के साथ, ओ जहां कलर होना चाहिए, जहां कंकण, जहां मुद्रा, जहां छलक भलक, बिल्कुल ऐसे बना दिया करके आके हाथ जोड़ के सामने खड़ा हो गया, प्रभु कर लिया काम। भगवान ने तुरंत अपने राइट हैंड उनके कंधे पर धर दिए सबके सामने। अब क्या चाहिए, ओ तो बुढ़ा बोल रहा था, बस प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कृपा करें तो जन्म जन्मांतर तक आपके और आपके पार्टी के लोगों के मैं काम करूं, बस वही मुझे चाहिए, यही मेरी इच्छा है। भगवान बोले इसी तरह पीछे चलेगा, चलो मेरी ओर से मैं देता हूं आपको, आपको अक्षय ऐश्वर्य प्राप्ति हो, आप बूढ़े हो गए लेकिन तरुण जैसा बन जाओ, बिल्कुल एक 15-16 साल के जवान जैसे आपका शरीर, आपके इंद्रियां, आपके दृष्टि, स्मृति सब सतेज सशक्त हो जाए, अक्षय ऐश्वर्य हम आप कभी घटे ना, ऐसे मिले बुद्धि, मिले आपको जस, मिले ऐसे वरदान देते। और वो तो भगवान के करके स्पर्श पा करके धन्य खड़ा होकर रो रहा है, सारे वरदान दे रहे हैं और भगवान के सामने देख रहा है, भगवान के स्पर्श पा रहा है, भगवान की वाणी पूरा हुआ, भगवान आगे बढ़ गए, उनको पता नहीं चला, वो तो समाधि में ही वो उनको पता भी नहीं चला कब उठ करके चल बैठे। उस नगर के कुछ लोग आए, बुढ़ा को उठाकर लेकर उनका दुकान में पहुंचा दिए, तब सावधान हुआ, उनको चेत आया, दुकान में बैठा, तब और आश्चर्य हुआ, और आश्चर्य की बात, दुकान में बैठकर क्या बोलता है कि मैंने सुना था कि कोई परसमणि होता है, कोई स्पर्श मणि पारस पत्थर होता है, कि मैं सुना था कि वही पारस पत्थर को कोई लोहे को छू लो तो लोहा सोना हो जाता है, लेकिन ये हमारे ये बालक नील सुंदर ये कैसे मणि था, कैसे मणि था जो मुझे स्पर्श किया, मुझ बूढ़े को पारस पत्थर से भी ज्यादा बना दिया, क्यों? अभी वो देख रहा है उनके दुकान में जिस वस्तु को हाथ में पकड़ा, चाहे लोहे के हो चाहे लकड़ी के हो, उसे सोने बन जाता है, सब सोने बन गया। और सारे आसपास के दुकानदार सब लोग देख रहे हैं कि उनके शरीर तो बिल्कुल 16 साल के 15 साल की जवानी, बिल्कुल जवान जैसे चमक रहा है शरीर, बोले अरे 80 साल के बूढ़े तो 15 साल के बच्चा बन गया, बालक बन गया था, ऐसे परिवार सभी के सामने आश्चर्य जो इतने बूढ़े लोग सब देखते हैं, अरे बाप अरे बाप, ये तो जिसको हाथ लगा है तो बच्चा बना दिया, बुढ़ापा खत्म। हाँ बुढ़ापा के लिए इतने कहा है कोई इधर उधर जाए, उनसे छू लेने से वो हमको नहीं छुएगा, हम उनको छू लेंगे, कोई बात नहीं। अब बुढ़ापा बोल उसमें क्या बात है। अब जन साधारण के मन में तो जो उनका उमंग, जो उनका उत्सुक उत्साह और बढ़ते चला जा रहे, क्या कमाल कर रहे, बुढ़ा को बालक बना दिया, जवान बना दिया, और तो सारे दुकान सुना कर दिया उसको, सारे सुना ही सुना हो गया, जा करे क्या। अब इस प्रकार करते हुए जब इस प्रकार अभी राज के पोशाक पहन करके मथुरा के राज रास्ता पर आगे और बढ़ने लगे और सुंदर लग रहे हैं। पहले तो गोप वेश में थे, अब मर्डर करके ड्रेस मिला, अब टेलर मिला कि ऐसी फिटिंग कर दिया, अब फिट ड्रेस पहन करके रॉयल ड्रेस सारे बच्चों के साथ में दोनों कुमार आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं तो सारी भीड़ उनके पीछे चल रहा है, आगे आगे दोनों लड़के चल रहे हैं। चलते 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 हठात एक चौराहे पर बाएं साइड गली में मुड़ गए। सारे बोलते हैं गली में क्यों गए, मेन रोड तो ये है, इधर सजाया गया है, सारे भीड़ आगे तक यहीं सब खड़े लोग खड़े हैं देखने के लिए, ये गली में कोई नहीं, इधर क्यों मुड़ गया। कोई बोला भाई जो मथुरा दर्शन करना है खाली मेन रोड देखेगा, साइड रोड नहीं देखेगा, उसको देखना क्या है कैसे। अब साइड रोड में घुस गया, कहां जाए क्या पूछे, सब गोप सखा बोले पता नहीं, चलो कहां जा रहे चलते, हम चलते हैं पीछे पीछे, वो जान ले जाए। अब सारे जनता की भीड़ भी उनके पीछे पीछे, कहां जा रहे कहां जा रहे, सब आश्चर्य। अब उस गली में गुजर चलते 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 वो एंड तक गया, जा करके एक सिंपल सा मकान था, उस मकान के लग करके बहुत बड़ा एक बगीचा था, पुष्प उद्यान था, और ऐसे बिल्कुल साधारण सा पुराना टूटा फूटा मकान था। उसका अंदर घुस गए, बलराम भी देखे, बोले अनुज जब गए तो मैं भी क्यों, वो भी घुस गए। सारे सखा बोले भाई वो दोनों गए, हम क्यों खड़े, हम भी चले। बाकी जो आउटसाइडर नगरवासी थे वो तो नहीं जा सकेंगे ना, वो सब द्वार पर खड़े रहे, पूरा भीड़ वो यहां कर द्वार पर खड़े हो गया। आप जो बड़े बूढ़े तो जानते हैं अपने गांव की बात, सब पता है कौन है किसका घर है। बोले अरे इन घर में आ गए क्या, तो उनके बारे में चर्चा चल पड़ा, ये घर किसका है, ये तो माली सुदामा का है। पुरखे बूढ़े लोग कहने लगे अरे आप क्या जानते हैं, मथुरा में ये भी दिन था जब सारे देव मंदिर में सारे देव प्रतिमाओं के बख्य भूषित कर रहा था सुदामा के हाथ के बनाया हुआ माला। माला बनाने के कला में तो विशेषज्ञ हैं, कौन से सीजन में कौन से फूल कितने बड़े, कौन सा कलर का, कौन सा सुगंध का होना चाहिए माला में, उसका पूरी जानकर शायद किसी माली को पता होगा, वो उसका विशेषज्ञ था। मथुरा के लोगों तो यहां तक कहते हैं कि माला देखना नहीं, केवल खुशबू से माला कहीं है, खुशबू से पता चले तो सुदामा का माला होगा निश्चित, ये खुशबूदार माला तो कोई कर नहीं सकता ना, उनको पता है। आपने फूल उगाता था, आपने फूल तोड़ता था, खुद माला बनाता था, ऐसे लोग कहते हैं कि वो अगर फूलों को स्पर्श करता था, फूल के साथ बातचीत करता था, सुमन के साथ वो बातें करता था, और फूलों के पौधे उनके सगे संतान जैसे लगते थे। और लेकिन एक बड़ी वो भी था, सब कोई मांगे माला के लिए, किसी को नहीं देगा, पहले पूछेगा किस लिए, अगर पूछेगा इस काम में शादी है या ये उछल नहीं घटाओ माला नहीं, केवल ठाकुर जी के विग्रह के लिए, केवल और किसी के लिए नहीं। पूरे मथुरा मंडल के जितने बड़े बड़े मंदिर है, जितने देव प्रतिमा है, उनके विशेष अभिषेक विशेष उत्सव दिन की तो एक एकांत आवश्यकीय सामग्री सुदामा के माला, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता फेस्टिवल, चलो अवश्य चाहिए। प्रत्येक नारायण के विग्रह का अवख्य भूषण उन्हीं की गुथी हुई माला घोषित करता था, कीमत नहीं पूछता था, जो दो से दो, लेकिन केवल भगवान के लिए। बड़े बूढ़े कहते हैं महाराज उग्रसेन भी उनको सम्मान करते थे, उनके रानी के श्रृंगार के लिए भी वो माला अप्राप्य था, मना कर दिया राजा को, बोला ना मैं नहीं दूंगा, राजा उनको बुरा नहीं माने, बोले तेरा निष्ठा उत्तम है, महाराज भी उनको प्रशंसा किए, नहीं दिया रानी के लिए ना, बोला ना ये तो केवल शिवग्रह के लिए मेरे हाथ को माना। लेकिन जब से ये महाराजा कंस बना, सिंहासन राजा बना, तब से वो संन्यास ले लिया अपने काम से, काम से संन्यास ले लिया। बोला बदमाश करेगा, बोल वो तो पूजा तो बंद करवा दिया सारे, फूलमाला उनके लिए चाहिए, बोला उनके साथ कौन लड़ेगा, मारपीट करेगा, बोला नहीं कर, मना कर दिया। तो सारे युवक बोले बोले अच्छा अच्छा ये निष्ठा है जो प्रभु को खींच करके उनके घर में लाया। अरे हम स्वयं देखे हैं, आज दोपहर में अक्रूर चाचा उनके लगेंगे, वसुदेव के सगे भाई हैं, वो उनको पैर पकड़ करके हाथ पकड़ के रो रो करके बोल रहे थे चलो मेरे घर में थोड़ा, अस्वीकार कर दिया, नहीं है इनके घर में बिन बुलाए, वो तो परिचित नहीं, उनको बुलाने गए था रास्ता में जाकर थोड़ा उनको भेटी, वो भी नहीं, वो कहां बैठा घर है कि नहीं पता नहीं, वो जैसे अपने घर में घुसते चला जाए परिचित की तरह, कमाल है। अब सुदामा माली के बाद देखिए क्या था, काल द्वादशी था, द्वादशी व्रत रखा था उन्होंने, हाँ उसी दिन का द्वादशी था सुदामा माली, आज के नहीं, अभी भगवान जा रहे हैं त्रयोदशी के दिन नगर दर्शन कर रहे हैं, अभी चतुर्दशी शिवरात्रि होने वाला है, वही फाल्गुन मास के द्वादशी थी। उन्होंने जब से कंस राजा हुआ, काम धाम छोड़ करके अपने घर में तो नहीं अकेले थी, घर में अपने पुष्प उद्यान में बैठ करके बस फूल पेड़ को लते बिरुद्ध को बस सवारना सिंचाई करना वही करता था, बस उसी में और कुछ नहीं करता था, काम धाम छोड़ दिया था। काल द्वादशी रखा था उन्होंने, आज सुबह गया था जमुना स्नान में, प्रारंभ करूंगा जमुना स्नान करने, स्नान करके आते समय सारे देखा कि नगर सजावट ये सब क्या बात है, पता लगा कि आज अभी लड़के आने वाले हैं, वसुदेव नंदन आने वाले हैं, बस उनका मन में तो उमंग उत्साह भर गया कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, मेरे प्रभु आ रहे हैं, तो मेरे घर में तो अवश्य पधारेंगे, कैसे नहीं पधारेंगे, मैं जो उनका हूं मुझे भूल जाएंगे नहीं, अरे मैं तो तैयारी कुछ नहीं किया, दौड़े दौड़े गया, अब जा करके लग गया पूरे घर को सफाई मजाई पोछाई झाड़ू पोछा करवाने लगा, शाम तक तो सफाई करने लग गया, शाम को गया मार्केट में, क्योंकि जो सुई और धागा सब तो पुराना जंग खा गया, वो है नहीं काम के लायक, जा करके बाजार से थोड़ा नया सुई और नया धागा कुछ खरीद के लाया, और कुछ फल मूल कंदे की टोकरी खरीद के सर में उठा के लाया, रात भी थोड़ी सोया, रात भर जा करके अपने बगीचा में एक फूल को बढ़िया से खिलाने के लिए, सुगंधित करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या कैसे किया जाए, सारे प्रयोग उनको पता था, कौन सा मसाला बना करके सब डाला, और पेड़ में रात भर उनको सिंचाई सब सेवा करता था। वो बोलता था, बोले अरे मेरे बच्चों आप काल तक फूल करके खेलना, फूल करके काल मेरे स्वामी आ रहे हैं, आप सबको मैंने धन्य कर दूंगा। हाँ ऐसे कह कह करके उनको सब सेवा कर रहा था रात भर। अब सुबह सुबह थोड़ा सा झांकी लिया था, सेवा पूजा करके घर सजावटी करना था। आप जैसे सुबह थोड़ा फट से उठ पड़ा, उठ पड़ करके स्नान करके अभी पहले गया बगीचा में। बगीचा में प्रवेश करके देख रहा है अद्भुत, जिसे उनके बात है पेड़ पौधे से माने थे, कोई पेड़ पौधे में पत्ता ही नहीं दिखता, केवल फूल ही फूल, जैसे उनके शाखा प्रशाखा फूल से ही बनी हुई है, है नहीं कुछ, केवल पुष्प से बनी हुई है। जो पत्तल है तुलसी जैसे मंजरी पत्तल पूरा भरा हुआ है, बाकी पुष्प नाना विविध प्रकार के विविध सुगंध के जिनको भरा हुआ है पूरा। इतने खुश हो गया, बास्केट की बास्केट फूल तोड़ करके भरने लगा। अब आपका टाइम भी हो चुका है, बाकी काल पूरा करेंगे। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं।